आगे सबक देखिए भाई। قال واما شركه العنان فتنعقد على الوكاله دون الكفاله وهي ان يشترك اثنان في نوع بز او طعام او يشتركان في عموم التجارات ولا يذكران الكفاله। بھئی شرکت مفاوضہ کے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ صاحب ہدایہ نے آپ کو بتلایا कि शिरकत मुफावजा वो सिर्फ दिरहम दीनार और फुलूस नाफिका में जायज है, जबकि इनके अलावा सामान और मिसलियात वगैरह के अंदर अक्द शिरकत जायज नहीं है। अलबत्ता अगर सोने और चांदी के टुकड़े हैं और उनके अंदर लोगों का तआमुल जारी है, लोग उसके साथ बेओ शिरा करते हैं, उसके साथ तिजारत करते हैं, तो फिर सोने चांदी के टुकड़ों के साथ भी अक़्द शिरकत जायज है। और साहिब हिदायत ने तफसील बयान फरमाई थी कि यहां पर एक इबारत जामे सगीर की है और एक इबारत जो है वो किताबुस्सर्फ की है, यानी मबसूद की किताबुस्सर्फ। भाई जामे सगीर की इबारत से पता चलता है कि ये जो सोने चांदी के जो टुकड़े हैं इनके साथ अक़्द मुफावजा जायज नहीं, मालूम हुआ ये तायीन से मुतायन हो जाते हैं। मैंने आपको बतलाया था कि जो चीजें तायीन से मुतायन हो जाती हैं उनके अंदर शिरकत जायज नहीं होती, और वो चीजें जो तायीन से मुतायन नहीं होती उनके अंदर अक़्दे शिरकत जायज होता है। तो जामे सगीर के इबारत से मालूम होता है कि सोने और चांदी के टुकड़ों के साथ अक़्दे मुफावजा जायज नहीं है। मालूम हुआ ये सामान के हुक्म में है, जिस तरह सामान तायीन से मुतायन हो जाता है ये सोने चांदी के टुकड़े भी तायीन से मुतायन हो जाते हैं, और जब ये तायीन से मुतायन हो जाते हैं तो फिर तो इनके साथ शिरकत और मुजारबत जायज नहीं। लेकिन किताब उस की इबारत से पता चलता है कि सोने चांदी के टुकड़े तायीन से मुतायन नहीं होते, तो जब ये मुतायन नहीं होते तो इनका वही हुक्म होगा जो दिरहम दीनार और फुलूस नाफिका का है, और दिरहम दीनार और फुलूस नाफिका के साथ तो अक़्द शिरकत जायज है। तो किताब सर्फ की इबारत से मालूम हुआ कि सोने चांदी के टुकड़ों के साथ भी अक़्द शिरकत जायज है। और फिर साहिब हिदायत ने बतलाया कि ज्यादा सही कौल वो है जो जामे सगीर के अंदर जिक्र है। जो कौल किताबु सर्फ में जिक्र है वो भी सही है, लेकिन जो जामे सगीर के अंदर जिक्र है वो ज्यादा सही है। तो उसके मुताबिक ये जो सोने और चांदी के टुकड़े हैं इनके साथ अक़्द शिरकत जायज नहीं है, इल्ला ये के लोग उन पर बाहम तआमुल करते हों और इनको समन की तरह इस्तेमाल करते हों। तो जब समन की तरह इस्तेमाल करते हों तो फिर सोने चांदी के टुकड़ों के साथ भी अक़्द शिरकत जायज है भाई। और फिर बतलाया साहिब हिदायत ने कि जो मिसलियात हैं इनमें तीन सूरतें बनती हैं मिसलियात के अंदर। एक सूरत यह है कि मिसलियात को आपस में मिलाया न गया हो, जैद के पास भी सौ मन गंदुम है, अमर के पास भी सौ मन गंदुम है, इन दोनों को मिलाया नहीं गया, इसी तरह बगैर मिलाए ही जैद और अमर आपस में अक़्द शिरकत करना चाहते हैं, तो बिल इत्तेफाक हमारे अइमा के नजदीक ये जायज नहीं। यानी ये मिसलियात आपस में मिलाने से पहले सामान के हुक्म में है, और सामान जो है उस पर तो अक़्द शिरकत जायज नहीं, तो इन मिसलियात पर भी अक़्द शिरकत जायज नहीं है। लेकिन अगर मिसलियात को मिला दिया गया तो फिर यहां दो सूरतें बनती हैं कि ये दोनों मिसलियात या तो एक ही जिंस के होंगे, यानी दोनों तरफ से गंदुम होगी, या दोनों की जिंसें अलग अलग होंगी, यानी एक की तरफ से गंदुम है तो दूसरे की तरफ से मसलन जौ है भाई। तो उसमें बताया कि अगर दोनों तरफ से एक ही जिंस हो और इनको मिला दिया गया है और फिर इसमें दो शरीक अक़्द शिरकत करना चाहते हैं, तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जैसे ये मिसलियात मिलाने से पहले सामान के हुक्म में थे, इसी तरह मिलाने के बाद भी ये सामान के हुक्म में है, लिहाजा इन पर अक़्द शिरकत जायज नहीं है, बल्कि यहां सिर्फ शिरकतें मिलकर आ गई है, दोनों इसके मालिक बन गए हैं, तो दोनों को अपने हिस्से का नफा और अपने हिस्से का नुकसान पहुंचेगा भाई। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यहां जब जिंस एक है तो यहां अक़्द शिरकत जायज है। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये जो मिसलियात हैं इनकी मुशाबहत समन के साथ भी है और इनकी मुशाबहत मबीए के साथ भी है। समन तायीन से मुतायन नहीं होते और मबीआ तायीन से मुतायन हो जाता है। तो लिहाजा ये जो मिसलियात हैं इनकी मुशाबहत समन के साथ भी है कि जिस तरह समन किसी के जिम्मे में रह सकते हैं, इसी तरह ये मिसलियात भी किसी के जिम्मे में रह सकते हैं। और इसी तरह इन मिसलियात की मुशाबहत मबीए के साथ भी है, जिस तरह मबीआ तायीन से मुतायन हो जाता है, इसी तरह ये मिसलियात भी तायीन से मुतायन हो जाते हैं। तो मालूम है मिसलियात की मुशाबहत समन से भी है और मबीए से भी है। और यहां हालतें भी दो हैं, एक हालत है इनके मिलाने से पहले की और एक हालत है इनके मिलाने के बाद की। तो हमने दोनों मुशाबहतों का एतबार किया है। मिलाने से पहले हमने इन मिसलियात को समान वाला हुक्म दिया, लिहाजा इनके अंदर अक्द शिरकत जायज नहीं मिलाने से पहले, और मिलाने के बाद हमने इनको समन वाला हुक्म दे दिया, और समन में तो अक्द शिरकत जायज है, लिहाजा इनमें भी अक्द शिरकत जायज है। और फिर तीसरी सूरत बयान की थी कि अगर इन मिसलियात को आपस में मिला दिया गया लेकिन दोनों की जिनसें अलग अलग हैं, एक की तरफ से गंदम है और दूसरे की तरफ से जौ है, या एक की तरफ से घी है और दूसरे की तरफ से जैतून का तेल है, तो दो अलग अलग जिंसों को मिला दिया गया, अगरचे दोनों मिसलियात में से हैं लेकिन जब इनको आपस में मिला दिया गया तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक इसमें अक़्द शिरकत जायज नहीं। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जब दोनों तरफ से एक ही जिंस हो तो मिलाने के बाद भी वो मिसलियात में से ही हैं, उसको अगर कोई हलाक भी कर देगा तो उसको उसका मिसल ही देना पड़ेगा, और अगर दोनों तरफ से जिंसें अलग अलग हैं तो मिलाने के बाद अब ये मिसलियात में से न रहे, क्योंकि बाजार में तो इनका मिसल नहीं मिलता, बाजार में तो इस तरह ये चीजें मिली हुई नहीं मिलती भाई, तो अब ये मिसलियात न रही बल्कि ये ज़वातुल क़ियम हो गई भाई, और जब ज़वातुल क़ियम हो गई तो अब इनके अंदर अक़्द शिरकत जायज नहीं है, जैसे सामान के अंदर अक़्द शिरकत जायज नहीं होती। वजह यह कि सामान के अंदर अगर अक़्द शिरकत कर लिया जाए और फिर बाद में वो दोनों शरीक अक़्द शिरकत को तोड़ना चाहें और अपने अपने रसूल माल को यानी अपने अपने सामान को अलग करना चाहें तो वहां पर जहालत आ जाती है, हर एक के लिए अपना सरमाया अलग करना मुमकिन ही नहीं रहता। मसलन जैद और अमर ने बर्तन मिलाए हैं और दोनों एक जैसे बर्तन हैं, तो अब दोनों के लिए अपना अपना रासुल माल अलग करना मुमकिन ही न रहा, तो दोनों के रासुल माल के अंदर जहालत आ गई, दोनों को पता ही नहीं चल रहा कि हमारा रासुल माल कौन सा है। जबकि मिसलियात के अंदर दोनों तरफ से जब गंदम है और दोनों ने इसको मिला दिया है तो अभी ये मिसलियात में से है, और फिर किसी वक्त अगर दोनों अक़्द शिरकत को खत्म करना चाहते हैं तो उसी गंदम को आपस में तकसीम कर लेंगे, और मिसलियात के अंदर तकसीम जो है वो इफराज के हुक्म में है, यूं समझेंगे हर शरीक को अपने हिस्से का रासुल माल वापस मिल गया, क्योंकि यहां इफराज है मुबादला नहीं। तो मालूम हुआ मिसलियात के अंदर माल को मिलाने के बाद भी अपना माल अलग करना मुमकिन है, जबकि सामान के अंदर मिलाने के बाद अपना सामान अलग करना मुमकिन नहीं है, जब एक जैसा सामान हो भाई। और ये जो एक की तरफ से गंदम है और दूसरे की तरफ से जौ है, तो जब इनको मिला दिया तो इनका हुक्म भी सामान वाला हो गया, और सामान के अंदर जब उसको मिला दिया जाता है तो वहां फिर जहालत आ जाती है, अपना असल रसूल माल अलग करना मुमकिन नहीं रहता, तो इस वजह से भी सामान के अंदर अक़्द शिरकत जायज नहीं। तो इसी तरह ये जो दो अलग अलग जिंसों को आपस में मिलाया है इसके अंदर भी अक़्द शिरकत जायज नहीं होगा भाई। और फिर उसके बाद साहिब कुदूरी ने हीला जिक्र फरमाया कि अगर सामान के अंदर दो अफराद जो हैं वो अक़्द शिरकत करना चाहते हैं तो अपना निसफ निसफ सामान दूसरे के हाथ बेच दें, लेकिन तायीन नहीं होनी चाहिए कि ये वाला निसफ मैं आपको बेच रहा हूं, बल्कि अपने माल का निस्फे गैर मुतायन दूसरे के सामान के निस्फे गैर मुतायन के बदले बेचते, इस तरह दोनों सामानों के अंदर दोनों की शिरकत आ जाएगी और उसके बाद फिर आपस में अक़्द शिरकत कर लें। तो ये तो साहिब कुदूरी फरमाते हैं, जबकि साहिब हिदाया उन फुकहा की राय को तरजीह देते हैं कि जिनके नजदीक सामान को मिला भी दिया जाए, आपस में बै भी कर दी जाए, फिर भी इसके अंदर अक़्द शिरकत जायज नहीं है भाई। बात समझ में आ गई। अब आइए आज के सबक पर। قال واما شركه العنان فتنعقد على الوكاله دون الكفاله وهي ان يشترك اثنان في نوع بز او طعام او يشتركان في عموم التجارات। भाई अब शिरकत ऐनान की बात आ गई। अभी तक तफसील बयान हो रही थी शिरकत मुफावजा की। साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि यह अकद शिरकत चार किस्म पर है, एक शिरकत मुफावजा है, एक शिरकत ऐनान है, एक शिरकत सनाए है और एक शिरकत वजूह है। भाई तो शिरकत मुफावजा का बयान खत्म हुआ, अब शिरकत ऐनान का बयान आया। भाई शिरकत मुफावजा के अंदर तो आपने पढ़ा कि दोनों शरीकों का माल भी बराबर होना चाहिए और नीज वो तसरुफ और दीन के अंदर भी बराबर होने चाहिए, और नीज शिरकत मुफावजा में हर शरीक दूसरे का वकील भी होता है और कफील भी होता है। जबकि शिरकत ऐनान के अंदर याद रखो दोनों का माल बराबर होना जरूरी नहीं, यानी वो माल जिसके अंदर शिरकत की जाती है यानी दिरहम दीनार और फुलूस से नाफिका, वो दोनों का बराबर होना जरूरी नहीं। और नीज इसके अंदर सारे माल के अंदर भी शिरकत जरूरी नहीं है। आपके पास मसलन 50 लाख हैं और आप सिर्फ 5 लाख पर किसी के साथ अकद शिरकत करना चाहते हैं तो ये आपके लिए जायज है भाई। और इसी तरह शिरकत ऐनान के अंदर याद रखो दोनों शरीक एक दूसरे के वकील तो होते हैं अलबत्ता एक दूसरे के कफील नहीं होते। दोनों शरीक एक दूसरे के वकील तो होते हैं लेकिन कफील नहीं होते, इल्ला ये कि कफालत को अलग से बाकायदा जिक्र कर दें कि हम दोनों एक दूसरे के कफील भी होंगे। बात समझ में आ गई। तो शिरकत ऐनान में माल का बराबर होना भी जरूरी नहीं और सारे माल के अंदर भी शिरकत जरूरी नहीं, और शिरकत ऐनान में दोनों शरीक एक दूसरे के सिर्फ वकील होते हैं कफील नहीं होते, इल्ला ये कि वो कफालत को बाकायदा जिक्र कर दें। तो देखिए भाई किताब पर काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं अम्मा शिरकतुल ऐनानी, तो शिरकत ऐनान जो है फतन आकिदु अलल वकालती दून अल कफालती, तो ये वकालत पर मुनाकिद होती है ना कि कफालत पर। वही अयश तरीका स्नानी, और वो ये कि दो आदमी शरीक हो जाएं फी नौ बजिन बजुन, भाई याद रखो ये कपड़े को कहते हैं, जा मुशद्दद है बज, ये कपड़े को कहते हैं और कपड़े बेचने वाले को अरबी में बजाज कहते हैं भाई। तो दो आदमी शिरकत कर लेते हैं, मसलन 5 लाख आपने मिलाए और 5 लाख अमर ने मिलाए और आप दोनों ने फैसला किया कि हम कपड़े की तिजारत करेंगे, या आप दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों गंदम की तिजारत करेंगे, तो इसके अंदर दोनों की मर्जी है। बाज औकात एक खास किस्म की तिजारत करते हैं और बाज औकात आम तिजारतों पर यह अकद कर लिया जाता है कि दोनों में से हर एक को इख्तियार होता है, वो जो भी तिजारत करना चाहे, चाहे कपड़े की हो, चाहे गंदम की हो, चाहे सामान वगैरह की हो, जो भी तिजारत करना चाहे वो कर सकता है। मालूम हुआ शिरकत ऐनान आम भी हो सकती है और खास भी। आम होने का क्या माना, यानी किसी किस्म की तिजारत की कैद नहीं होती, दोनों शरीक आम तिजारतों के अंदर अकद कर लेते हैं कि जिसका जो दिल चाहे वो तिजारत करे लेकिन नफे के अंदर दोनों शरीक होंगे भाई। तो ये है शिरकत ऐनान जो आम है, और एक शिरकत ऐनान खास है जो खास किस्म की तिजारत में की जाए कि दोनों कपड़े की तिजारत करेंगे या दोनों गल्ले की तिजारत करेंगे। तो कहते हैं वहिया, और शिरकत ऐनान वो ये है अयश तरीका स्नानी के दो आदमी शरीक हो जाएं फी नौ बजिन एक किस्म के कपड़े में, औ तआमिन, मैंने आपको बतलाया था कि अरबी जुबान में तआम जो है वो गंदम को कहते हैं, तो फिका की किताबों में जहां भी तआम का लफ्ज आए उससे उमूमन ये गंदम ही मुराद होती है। और वो खाना जो हम खाते हैं जो रोजाना तैयार किया जाता है और खाया जाता है उसको भी तआम कहते हैं, लेकिन अगर इस तआम से वो रोजाना खाया जाने वाला खाना मुराद होगा तो वहां फिर फुकहा उसकी तसरीह करते हैं। तो फिका की किताबों में आम तआम का लफ्ज आए तो उससे गंदम मुराद लेते हैं। तो कहते हैं वही अयश तरीका स्नानी फी नौई बजिन औ तआमिन, और वो ये कि दो अफराद आपस में शरीक हो जाएं एक किस्म के कपड़े के अंदर औ तआमिन या गंदम के अंदर कि उसकी तिजारत करेंगे, औ यश तरीकानी फी उमूमी तिजारती, या दो आदमी आपस में शिरकत कर लेते हैं आम तिजारतों के अंदर कि दोनों को इजाजत है जिस चीज की भी वो तिजारत करना चाहे कर सकता है। कहते हैं अव यश तरीका निफी उमूमी तिजारत, या दोनों शिरकत कर लेते हैं आम तिजारतों के अंदर। वला यस कुरानिल कफालता, और कफालत को वो जिक्र नहीं करते हकत के अंदर, कफालत को जिक्र नहीं करते भाई। हां अगर वो कफालत को तय कर लेते हैं कि हर एक दूसरे का वकील भी होगा और कफील भी होगा, फिर दोनों एक दूसरे के कफील भी होंगे भाई। तो कहते हैं वला यस कुरानिल कफालता, और वो दोनों कफालत को अकद में जिक्र नहीं करते। वन इकादुहू अलल वकालती, भाई सवाल पैदा होता है कि शिरकत इनान के अंदर वकालत को जिक्र न किया जाए फिर भी हर शरीक दूसरे का वकील होता है, इसकी क्या वजह है? कहते हैं वजह यह कि ताकि मकसूद साबित हो सके, और शिरकत का मकसद क्या है? नफे के अंदर शिरकत, और नफे के अंदर शिरकत तभी हो सकती है जब हर एक दूसरे का वकील होगा। दोनों शरीक जो भी बैउ शिरा करें, जब उसके अंदर वो दूसरे का वकील भी होगा तो जमान भी दोनों पर आएगा और नफे में भी दोनों शरीक होंगे। तो कहते हैं वन इकादुहू अलल वकालती, और शिरकत इनान का वकालत पर मुनाकिद होना, लितहक्कुके मकसूदी ही, ताकि इस आकद का मकसूद जो है वो साबित हो जाए। कमा बयन्ना हो, जैसे कि हमने बयान कर दिया कि यहां मकसद जो है वो नफे के अंदर शिरकत है भाई। वला यनाकिदु अलल कफालती, और ये शिरकत जो है कफालत पर मुनाकिद नहीं होती, ये शिरकत कफालत पर मुनाकिद नहीं होती, यानी जब जिक्र ना किया जाए। तवज्जो है, अगर जिक्र करेंगे फिर तो दोनों एक दूसरे के कफील भी बन जाएंगे, फिर हर एक से दैन का मुतालबा हो सकता है, लेकिन अगर कफालत को वो जिक्र नहीं करते तो फिर कफालत पर ये शिरकत ऐनान मुनाकिद नहीं, दोनों एक दूसरे के कफील नहीं है भाई। तो कहते हैं वला यनाकिदु अलल कफालती, और ये शिरकत इनान कफालत पर मुनाकिद नहीं होती। लिअन्न लफ्ज मुश्तक मिनल इराज़ी युकालु अन्न लहू अय अअरज़ा, भाई ये बात अच्छी तरह समझ लें। यहां साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे कि ये इनान का लफ्ज इराज़ से मुश्तक है। लिअन्न लफ्ज, इसलिए क्योंकि ये वाला लफ्ज जो है यानी इनान जो है मुश्तक मिनल इराज़ी, ये इराज़ से मुश्तक है। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखें कि इनान का मादा जो है आइन नून नून है, और इराज़ का मादा जो है आइन राज़ाद है, तो दोनों का मादा ही अलग है, फिर मुश्तक होने का क्या माना? तो शारहीन जवाब देते हैं कि मुराद मानवी इश्तिकाक है, यानी माना के एतबार से यह इनान मुश्तक है इराज़ से, यानी दोनों का माना एक है। जो इनान का माना है वही इराज़ का भी माना है, तो ये इनान माना के एतबार से इराज़ से मुश्तक है। अब इराज़ का क्या माना है ये अच्छी तरह समझ लो, याद रखो अअरज़ा युअरिज़ु इराज़न, जब इसका सिला अन आए तो इसका माना होता है रुख फेरना, रुगर्दानी करना। अअरज़ा ज़ैदुन, ज़ैद ने इराज़ किया अन अमरिन, अमर से, जैद ने अमर से एराज किया यानी उसे रुख फेर लिया। तवज्जो है, तो आरजा का माना रुख फेरने के हैं, एराज करने के हैं, जब इसका सिला अन आ रहा हो। इसी तरह याद रखो अन्न या इन्नो अन्नन व उनूनन, इसका माना भी होता है एराज करना और रुख फेरना, जब इसका सिला अन आए। अन्न ज़ैदुन, ज़ैद ने एराज किया अन अमरिन, किससे? अमर से। तो अअरज़ा ज़ैदुन अन अमरिन और अन्न ज़ैदुन अन अमरिन, दोनों का माना एक ही है जी। अन्न ज़ैदुन अन अमरिन क्या माना? ज़ैद ने अमर से एराज किया, और अअरज़ा ज़ैदुन अन अमरिन, इसका भी क्या माना है? ज़ैद ने अमर से एराज किया। तो अअरज़ा का सिला जब अन आए तो इसका माना भी एराज करना, और अन्ना का सिला जब अन आए तो उसका माना भी एराज करना। और इसी तरह याद रखो अअरज़ा का एक माना है जाहिर होना, अअरज़ा का एक माना क्या है? जाहिर होना। इसी तरह अन्ना का एक माना भी है जाहिर होना। तो अअरज़ा के दो माना मैंने जिक्र कर दिए, अअरज़ा अनहु हो तो माना है एराज करना, और सिर्फ अअरज़ा हो तो इसका माना है जाहिर होना। और इसी तरह अन्ना है अन्ना अनहु, इसका माना है एराज करना, और सिर्फ अन्ना हो तो इसका माना है जाहिर होना। तवज्जो है, तो यहां पर साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे कि यह ऐनान इराज से मुश्तक है, यानी जैसे इराज का माना है जाहिर होना, ऐनान का माना भी जाहिर होना है। किस तरह जाहिर होना? भाई शिरकत ऐनान में दो आदमी आपस में अकदे शिरकत करते हैं, मसलन जैद और अमर, ये दोनों आपस में अकदे शिरकत करते हैं, तो जैद की भी यह राय बनी कि मुझे अमर से शिरकत करनी चाहिए, और अमर की भी यह राय बनी कि मुझे जैद के साथ शिरकत करनी चाहिए, तो दोनों की यह राय बनी, यानी दोनों के लिए यह बात जाहिर हुई कि मुझे शिरकत करनी चाहिए। और जाहिर होने को क्या कहते हैं अरबी में? अन्ना लहू, उसके लिए यह बात जाहिर हुई। अभी मैंने बताया अन्ना और आरजा का एक माना क्या है? जाहिर होना। तो जैद और अमर दोनों ने शिरकत की है, मालूम हुआ दोनों के लिए यह बात जाहिर हुई, दोनों की यह राय बनी, दोनों का यह ख्याल बना कि हमें आपस में शिरकत करनी चाहिए। और राय बनना और ख्याल बनना, इसके लिए अरबी में क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? अन्ना लहू, यानी जाहिर होना। और इसी तरह आरजा का भी एक माना क्या है? जाहिर होना। तवज्जो है, तो मालूम हुआ यह ऐनान मुश्तक है इराज से। जिस तरह इराज का माना जाहिर होना है, इसी तरह अन्ना लहू का भी क्या माना है? जाहिर होना। तो कहते हैं लि अन्ना लफ्ज मुश्तक मिन अल इराज, इसलिए क्योंकि यह लफ्ज ऐनान मुश्तक है इराज से। युकालु अन्ना लहू, अरबी में कहा जाता है अन्ना लहू ऐ आरजा, यानी उसके लिए यह बात जाहिर हुई, उसकी यह राय बनी। वहादा ला युम्बी ओ अनिल कफालती, और यह लफ्ज जो है यह कफालत की खबर नहीं देता। ऐनान का क्या माना है? जाहिर होना, राय बनना, इसमें तो कहीं कफालत वाला माना नहीं। मुफावजा के अंदर कफालत वाला माना था। भाई किस तरह था? भाई मुफावजा का माना है मुसावात और बराबरी, और बराबरी तभी हो सकती है कि एक चीज का मुतालबा एक शरीक से हो सकता है तो दूसरे से भी उसका मुतालबा हो, अगर दूसरे से उसका मुतालबा नहीं हो सकता फिर तो मुफावजा नहीं, फिर तो मुसावात नहीं। भाई तवज्जो है, तो मुफावजा का क्या माना था? मुसावात, और मुसावात तभी हो सकती थी जब एक माल का मुतालबा दोनों से हो सके। भाई तो इसलिए वहां कफालत का माना भी था, लेकिन यहां पर ऐनान का माना तो सिर्फ जाहिर होने के है, तो यह लफ्ज कफालत का तकाजा नहीं करता। जब यह लफ्ज कफालत का तकाजा नहीं करता तो कफालत के लिए कोई और दलील चाहिए। मसलन दोनों आपस में तय कर लेते हैं कि हम शिरकत ऐनान कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे के कफील भी होंगे, तो देखो अब इन्होंने अलग कफालत को जिक्र कर दिया, खुद लफ्ज से कफालत साबित नहीं हुई। तवज्जो है, तो मालूम हुआ शिरकत ऐनान के अंदर ऐनान का लफ्ज वो कफालत का तकाजा नहीं कर रहा। और कफालत के साबित होने की दो ही सूरतें थीं, या तो लफ्ज से कफालत साबित हो या किसी और दलील से क्या हो, कफालत साबित हो। और कोई दलील तो यहां है नहीं, सिर्फ लफ्ज ही है, और लफ्ज से तो कफालत साबित नहीं हो रही। लेकिन अगर और दलील मौजूद है, दोनों ने आपस में तय कर लिया है कि हम एक दूसरे के जामिन भी होंगे, तो फिर कफालत भी आ जाएगी। लेकिन वो कफालत इस लफ्ज ऐनान की वजह से नहीं आई, बल्कि उस अलग दलील की वजह से आई कि दोनों ने उसको अलग आपस में तय कर लिया। भाई बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वहादा ला युम्बी ओ अनिल कफालती, और ये लफ्ज ऐनान जो है ये कफालत की खबर नहीं देता। वह हुक्म तसर्रुफी ला यसबुतु बिखिलाफी मुक्तज़ा लफ्ज़ी, और किसी तसर्रुफ का हुक्म वो लफ्ज के मुक्तज़ा के खिलाफ साबित नहीं हो सकता। भाई एक लफ्ज एक चीज का तकाजा करेगा वही तसर्रुफ साबित हो सकता है, लफ्ज जिसका तकाजा ही नहीं कर रहा वो लफ्ज से वो साबित भी नहीं हो सकता, लफ्ज से वो साबित भी नहीं हो सकता। मसलन मुफावजा किस चीज का तकाजा कर रहा था? बराबरी का, और बराबरी क्या चाहती है? कि दोनों तसर्रुफ में बराबर हों, और नीज मुतालबे के अंदर भी दोनों क्या हों? बराबर हों। एक से माल का मुतालबा हो सकता है तो दूसरे से भी माल का मुतालबा हो सकता है, तो वहां वो लफ्ज ही लफ्ज ही बराबरी का तकाजा कर रहा था और ईनान का लफ्ज जो है यह तो बराबरी का तकाजा नहीं कर रहा। तो लिहाजा लफ्ज के जरिए ऐसी चीज को नहीं साबित किया जा सकता जिसका लफ्ज तकाजा ही नहीं कर रहा, लफ्ज से सिर्फ उसी चीज को साबित किया जा सकता है जिसका लफ्ज तकाजा कर रहा हो। भाई बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वह हुक्म तसर्रुफी, और तसर्रुफ का जो हुक्म है ला यसबुतु वो साबित नहीं होता बिखिलाफ मुक्तजा लफ्जी, लफ्ज के मुक्तजा के खिलाफ। तसर्रुफ का हुक्म लफ्ज के मुक्तजा के खिलाफ साबित नहीं हो सकता, यानी लफ्ज से वही चीज साबित होगी जिसका लफ्ज तकाजा कर रहा है। कोई और चीज साबित करनी है तो उसके लिए अलग दलील चाहिए, लफ्ज के मुक्तजा से आप उसे साबित नहीं कर सकते। तो कहते हैं वह हुक्म तसर्रुफी ला यसबुतु बिखिलाफ मुक्तजा लफ्जी, और तसर्रुफ का हुक्म जो है लफ्ज के मुक्तजा के खिलाफ साबित नहीं हो सकता। यहां तक बात समझ में आ गई। आगे देखिए वयसिहु तफाज़ुलु फिल माली, और माल के अंदर कमी बेशी सही है। भाई शिरकत ईनान करने वालों का माल बराबर होना जरूरी नहीं, यानी वो माल जिस पर आपस में शिरकत कर रहे हैं उस माल का बराबर होना जरूरी नहीं। मसलन जैद 100 दिरहम मिलाता है तो अमर भी 100 दिरहम ही मिलाए और इस पर अक्द शिरकत करें ये जरूरी नहीं, बल्कि माल के अंदर कमी बेशी भी जायज है। मसलन अमर की तरफ से 100 दिरहम है और जैद की तरफ से 200 दिरहम है और इस पर वह अक्द शिरकत कर लेते हैं, यानी जैद का माल अमर से दुगना है तो इस पर भी शिरकत कर सकते हैं, यानी माल का बराबर होना जरूरी नहीं है। भाई तो कहते हैं वयसिहु तफाज़ुलु फिल माली, और सही है कमी बेशी फिल माली उस माल के अंदर, यानी वो माल जिसके अंदर शिरकत की जा रही है उसमें कमी बेशी सही है। तो कहते हैं वयसिहु तफाज़ुलु फिल माली, और माल के अंदर कमी बेशी सही है लिल हाजति इलैही, उसकी हाजत होने की वजह से। वजह यह कि इसकी हाजत पेश आती है, बाज़ औक़ात एक इंसान जो है वो कम माल के अंदर शिरकत करना चाहता है और बाज़ औक़ात ज्यादा माल के साथ वो शिरकत करना चाहता है, तो जरूरत और हाजत की वजह से माल की कमी बेशी हो फिर भी शिरकत ईनान जायज है। भाई ये माना है वयसिहु तफाज़ुलु फिल माली, और माल के अंदर कमी बेशी सही है लिल हाजति इलैही, इसकी हाजत होने की वजह से। वलैस मिन क़ज़ियति लफ़्ज़िल मुसावातु, और इस लफ्ज के क़ज़िये में से बराबरी नहीं है। कजिया का वैसे माना होता है फैसला और मुआमला, कजियत उनका क्या माना है मुआमला और फैसला, लेकिन यहां इससे मुराद है मुक्तजा जिसका लफ्ज तकाजा करे। भाई कहते हैं वलैस मिन कजियति लफ्जी, और लफ्ज के मुक्तजा में से नहीं है अल मुसावातु बराबरी, लफ्ज यहां बराबरी का तकाजा नहीं करता लिहाजा दोनों का माल बराबर होना जरूरी नहीं है। यह माना है वलैस मिन क़ज़ियति लफ्ज़िल मुसावातु, और लफ्ज के मुक्तजा में से मुसावात और बराबरी नहीं है। वयसिहु अन यतसावया फिल माली वयतफाज़ला फिर रिबही, भाई इधर देखिए दो आदमियों ने आपस में अक़्द शिरकत कर लिया, एक ने भी 5 लाख रुपए मिलाए हैं और दूसरे ने भी 5 लाख रुपए मिलाए हैं, तो जब माल बराबर हो तो क्या नफे में भी बराबरी जरूरी है या नफे में कमी बेशी मुकर्रर की जा सकती है? तो याद रखो इंदल अहनाफ नफे के अंदर कमी बेशी जायज है जी। नफे के अंदर कमी बेशी जायज, जैद का माल भी 5 लाख, अमर का माल भी 5 लाख है, लेकिन जैद कहता है कि नफे के अंदर मेरा हिस्सा 70% होगा और अमर का हिस्सा सिर्फ 30% होगा, और इस पर दोनों अक़्द शिरकत कर लेते हैं। अब दोनों का माल अगरचे बराबर है लेकिन नफा दोनों का बराबर मुकर्रर नहीं किया, फिर भी यह अक़्द शिरकत जायज है, फिर भी अक़्द शिरकत जायज है। जबकि आगे आपको बतलाएंगे कि इमाम जुफर और इमाम शाफई रहिमहुमल्ला फरमाते हैं कि नहीं, नफा जो है वो माल के बकदर होगा, अगर दोनों का माल आधा आधा है तो नफा भी आधा आधा ही तकसीम करना पड़ेगा, नफे के अंदर कमी बेशी जायज नहीं है। भाई जबकि इंदल अहनाफ माल बेशक बराबर हो फिर भी नफे में कमी बेशी मुकर्रर करना जायज है। अलबत्ता याद रखो नफे में तो कमी बेशी मुकर्रर कर लेंगे लेकिन अगर नुकसान हुआ तो जितना माल उतना ही नुकसान होगा, माल दोनों का आधा आधा है और जैद का नफा 70% है और अमर का नफा 30% है, लेकिन नुकसान अगर हुआ तो नुकसान दोनों पर बराबर तकसीम होगा, क्योंकि माल आधा आधा है भाई। तो ये हमेशा याद रखना, जहां भी शिरकत वाले अकद होंगे, जब भी नुकसान हुआ तो नुकसान माल के बकदर होगा, नुकसान माल के बकदर होगा। अगर आधा आधा माल है तो नुकसान भी आधा आधा, और अगर जैद का माल जो है मसलन 10 लाख है और अमर का माल सिर्फ 5 लाख है, तो नुकसान के अंदर भी जैद का हिस्सा दुगना होगा अमर से, क्योंकि जैद का माल दुगना है तो नुकसान के अंदर भी उसका हिस्सा दुगना होगा। बात समझ में आ गई? तो ये बहुत कीमती जाब्ता है, ये आपने हमेशा याद रखना है कि शिरकत के अंदर, नफे के अंदर तो कमी बेशी मुकर्रर की जा सकती है, लेकिन नुकसान जो है हमेशा माल के बकदर होगा भाई। तो कहते हैं वैसे हो तसावया फिल माली, और सही है कि दोनों शरीक आपस में माल के अंदर बराबर हों, वतफाजला फिर रिबही, और नफे के अंदर कमी बेशी करें, माल के अंदर बराबरी हो और नफे के अंदर कमी बेशी करें, यह सही है। वकाल जुफर व शाफी रहिमहुमल्लाहु ताला, और इमाम जुफर और इमाम शाफी रहिमहुमल्लाह फरमाते हैं ला यजूजू, ये जायज नहीं, माल में बराबरी हो और नफे में कमी बेशी हो यह जायज नहीं, बल्कि नफा भी उतना ही होगा जितना माल है भाई। तो कहते हैं इमाम जुफर और इमाम शाफई रहिमहुमल्लाह फरमाते हैं ला यजूज़ू, के नफे में कमी बेशी जायज नहीं है, लिअन्न तफाज़ुल फीही युअद्दी इला रिबह मा लम युज़मन। वो फरमाते हैं कि अगर नफे में कमी बेशी की जाएगी तो इसमें तो रिबह मा लम युज़मन की खराबी लाजिम आएगी। जैद ने भी 5 लाख रुपए मिलाए हैं, अमर ने भी 5 लाख रुपए मिलाए हैं, तो जैद को अगर आप 70% नफा देंगे तो 50% तो जैद का हक बनता है, क्योंकि उसका माल भी 50% है, और ये जो 20% आप जायद जैद को दे रहे हैं ये रिबह मालम युज़मन है, ये तो अमर के माल का नफा है, और अमर के माल का जमान अमर पर आएगा तो नफा भी अमर ही को मिलना चाहिए, जैद को ये नफा नहीं मिल सकता, क्योंकि नफा तो जमान के बदले होता है, और ये जो 50% से जायद माल है इसके अंदर तो जैद पर जमान नहीं, तो इसमें जैद का नफा भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो कहते हैं लिअन्न तफाज़ुल फीही, इसलिए क्योंकि नफे के अंदर कमी बेशी जो है युअद्दी इला रिबह मा लम युज़मन, ये पहुंचा देती है रिबह मा लम युज़मन तक, और वो जायज नहीं। फइन्नल माल इज़ा काना निस्फैनी, इसलिए क्योंकि दोनों का माल जब आधा आधा है, व रिबह असलासा, और नफे के 3 हिस्से हैं, मसलन जैद और अमर ने आपने शिरकत कर लिया, दोनों का माल तो आधा आधा है, 5 लाख जैद के हैं 5 लाख अमर के हैं, लेकिन जैद कहता है कि नफा जो भी आएगा उस नफे के 3 हिस्से करेंगे, 2 हिस्से मेरे होंगे और 1 हिस्सा तुम्हारा होगा, तो माल आधा आधा और नफे के 3 हिस्से, तो इसमें क्या खराबी लाजिम आएगी? रिबह मा लम युज़मन, इमाम शाफई और इमाम जुफर रहमहुमल्लाह के नजदीक। कहते फइन्नल माल इज़ा काना निस्फैनी, इसलिए क्योंकि माल जब वो आधा आधा है, व रिबह असलासा, और नफे के 3 हिस्से हैं, फसाहिबु ज्यादती, तो ज्यादती वाला यस्तहिक्कुहा बिला ज़मानिन, वो इस ज्यादती का मुस्तहिक हो जाएगा बगैर जमान के, वो इस जायद नफे का मुस्तहिक हो जाएगा बगैर जमान के। इसी जमान बिकदरी रसिल माली, इसलिए क्योंकि जमान तो रसुल माल के बकदर आता है, नुकसान तो रसुल माल के बकदर आता है। चुनांचे इसीलिए याद रखो, बैअ के अंदर आपने पढ़ा होगा कि जब तक इंसान मबीए पर कब्जा ना कर ले तब तक उसके लिए वो मबीहा आगे बेचना जायज नहीं है। वजह यह कि जब कोई चीज आपके कब्जे में आ जाती है तो अब वो आपके जमान में आ गई, अब अगर वो चीज हलाक हुई तो आपका अपना माल जाया होगा, और जब तक आपने एक चीज पर कब्जा नहीं किया तो चीज आपके जमान में नहीं, जब आपके जमान में नहीं तो आप उसे आगे भी नहीं बेच सकते। तो बात चल रही थी शिरकत ऐनान की, इमाम जुफर और इमाम शाफई रहिमहुमल्लाह फरमाते हैं शिरकत ऐनान के अंदर अगर माल बराबर है तो नफा भी बराबर होगा, और अगर नफे में कमी बेशी करेंगे तो रिबह मालम युज़मन की खराबी लाजिम आएगी और यह जायज नहीं। तो एक दलील ये थी इमाम जुफर और इमाम शाफई रहिमहुमल्लाह की। नीज वो फरमाते हैं कहते हैं जो नफे के अंदर दोनों की शिरकत आती है वो इस वजह से है कि असल यानी सरमाए में दोनों की शिरकत है, और सरमाए के अंदर जब दोनों की शिरकत आधी आधी है तो इसी सरमाए से जो आगे नफा हासिल हुआ उसके अंदर भी शिरकत आधी आधी होगी भाई, क्योंकि नफा ये फरा है असल यानी सरमाए की। असल क्या है? सरमाया। जब सरमाया आधा आधा है, जैद की तरफ से भी 5 लाख है, अमर की तरफ से भी 5 लाख है, तो जो इसमें ज्यादती हुई यानी जो नफा आया वो नफा फरा है किसके? असल यानी सरमाए की। तवज्जो है, फिर सुनो, ये जो सरमाया है दोनों ने माल मिलाया है ये है असल सरमाया, और नफा जो है वो ज्यादती है यानी वो फरा है। जैसे एक दरख्त की जड़ें और तना है और आगे उससे शाखें निकलती हैं, तो जड़ें और तना होगा तो आगे शाखें भी निकलेंगी, अगर जड़ें और तना ही नहीं तो आगे शाखें भी नहीं निकल सकती। तो ये नफा जो है ये फरा है, ये शाख है किस चीज की? असल यानी सरमाए की। ये असल और सरमाए की शाख है, और असल के अंदर दोनों का हिस्सा निसफ निसफ है, तो शाख के अंदर भी यानी नफे के अंदर भी दोनों का हिस्सा निसफ निसफ होगा। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वली अन्न शिरकत आइंदा हुमा फिर रिब्ह, इसलिए क्योंकि ये जो शिरकत है दोनों के नजदीक नफे के अंदर, लिशिरकतिन फिल असली, ये असल यानी सरमाए में शिरकत की वजह से है। नफे में जो शिरकत आ रही है वो क्यों आ रही है? असल यानी सरमाए में शिरकत की वजह से आ रही है। अगर सरमाए में शिरकत न होती तो नफे में भी शिरकत न होती भाई। तो कहते हैं वली अन्न शिरकत आइंदा हुमा फिर रिब्ह, इसलिए क्योंकि दोनों के नजदीक नफे के अंदर जो शिरकत है, लिशिरकतिन फिल असली, वो असल यानी सरमाए में शिरकत की वजह से है। वलिहादा यश्तरितान इल खालता, और इसीलिए दोनों मिलाने की शर्त लगाते हैं। याद रखो, इमाम शाफई और इमाम जुफर रहमहुमल्लाह के नजदीक शिरकत के अंदर माल का मिलाना शर्त है। जैद का हिस्सा भी 5 लाख, अमर का हिस्सा भी 5 लाख, हमारे नजदीक दोनों का माल मिलाना शर्त नहीं। दोनों ने आपस में अकदे शिरकत कर लिया तो यह अकद काफी है, यह अकद काफी है, चाहे दोनों का माल उनके अपने पास ही है लेकिन उसी के अंदर वो तिजारत कर रहे हैं। जब अकद कर लिया है तो नफे के अंदर दोनों शरीक होंगे। जैद अपने माल से जो नफा कमा रहा है उसमें अमर का भी हिस्सा होगा, और अमर अपने माल के जरिए तिजारत कर रहा है उसके अंदर जैद का भी हिस्सा होगा, क्योंकि दोनों ने अकद कर लिया। जब अकद कर लिया दोनों एक दूसरे के वकील बन गए। अब जैद जो भी चीज खरीदेगा या बेचेगा तो वो उसमें निसफ अकद उसने अपने लिए किया है, और निसफ अकद इसके लिए किया है शरीक के लिए, क्योंकि उसकी तरफ से वकील भी है भाई। तो लिहाजा जब हर एक अपने तसारुफ में दूसरे की तरफ से वकील भी है तो फिर वहां उस मुअक्किल पर जमान भी आता है, तो नफे के अंदर भी उसका हिस्सा आएगा भाई। जबकि इमाम जुफर और इमाम शाफई रहमहुमल्ला फरमाते हैं कि जो नफा होता है यह फरा है असल की, असल में शिरकत है तो फरा यानी नफे में भी शिरकत होगी। लिहाजा वो फरमाते हैं कि असल का भी मिलाना जरूरी है। जैद और अमर दोनों अपने अपने 5 लाख रुपए मिला देंगे कि पता ही ना चले कि कौन सा माल किसका है भाई, कि कौन सा माल किसका है, इस तरीके से मिलाना है। चुनांचे वो फरमाते हैं अगर एक की तरफ से दिरहम है और दूसरे की तरफ से दीनार है और दोनों ने इसको मिला दिया तो भी यूं समझो नहीं मिलाया, क्योंकि दिरहम और दीनार एक दूसरे से अलग पहचाने जाएंगे या नहीं पहचाने जाएंगे? दिरहम और दीनार तो एक दूसरे से अलग पहचाने जाएंगे, तो यूं समझो दोनों मिले ही नहीं, हालांकि मिलाना तो शर्त है उनके नजदीक। उनके नजदीक रसूल माल का मिलाना शर्त है इस तरीके पर कि पहचान ही ना हो सके कि किसका माल कौन सा है। या इसी तरह वो फरमाते हैं, आगे साहिब हिदायत भी जिक्र फरमाएंगे, एक की तरफ से सफेद दिरहम है यानी नए दिरहम है और दूसरे की तरफ से काले दिरहम है यानी पुराने दिरहम है, तो अब भी अगर दोनों को मिलाएंगे तो यह शिरकत सही नहीं उनके नजदीक, क्योंकि दोनों का माल पहचाना जा रहा है। दोनों ने मिला दिया है फिर भी अलग करना चाहे तो आराम से अलग कर लेंगे, क्योंकि दोनों के दिरहम अलग अलग किस्म के हैं। एक के दिरहम बिल्कुल सफेद चमकदार हैं, दूसरे के दिरहम पुराने और मैले और काले हैं भाई। बात समझ में आ गई? तो इमाम जुफर और इमाम शाफई रहमहुमल्लाह फरमाते हैं कि जो नफा है ये असल की यानी सरमाए की फरा है और असल के अंदर शिरकत है, इसलिए नफे के अंदर भी शिरकत होगी। चुनांचे इसीलिए फरमाते हैं कि असल को मिलाना जरूरी है, जैद और आमर का दोनों पैसों को मिलाना जरूरी है भाई। तो कहते हैं वली अन शिरकत इंदहुमा फिर रिब्ह, इसलिए क्योंकि इमाम जुफर और इमाम शाफई रहिमहुमल्लाह के नजदीक नफे के अंदर जो शिरकत है, लिशिरकत इन फिल असली, वो असल के अंदर शिरकत की वजह से है। वलिहादा यश्तरितान इल खलता, और इसीलिए दोनों मिलाने की शर्त लगाते हैं कि दोनों मालों को मिलाया जाएगा। अगर दोनों मालों को मिलाया नहीं, या मिलाया तो है लेकिन वो मिले नहीं, एक के दिरहम एक के दीनार हैं, तो शिरकत ही सही नहीं है भाई। तो कहते हैं वलिहादा यश्तरितान इल खलता, और इसीलिए दोनों जो हैं खल्त की यानी मिलाने की शर्त लगाते हैं। फसारा रिबहुल माली बिमंजिलती नमा इल आयान, तो ये माल का नफा भी नमाए आयान के दर्जे में हो गया भाई। बाज औकात बाज चीजों में अफजाइश आती है, वो बढ़ जाती हैं। मसलन आपके पास बकरियां हैं, 50 बकरियां हैं, तो साल भर के दौरान मसलन उन्होंने 5-10 बच्चे दे दिए, तो अब देखो असल माल थी बकरियां, लेकिन अब उनमें अफजाइश आ गई, बढ़ोतरी आ गई, उनकी तादाद बढ़ गई, उन्होंने बच्चे दे दिए। तो जो असल का मालिक होता है वो बढ़ोतरी और अफजाइश का भी वही मालिक होता है। तो जिसकी बकरियां थी, ये बकरियों के बच्चे भी उसी के हैं। तो इमाम शाफी और इमाम जुफर रहमतुल्लाह फरमाते हैं जिस तरह ऐन के अंदर ज्यादती आ जाए, किसके अंदर ऐन, जैसे मसलन बकरी थी और उसमें क्या आ गई ज्यादती कि उसने बच्चा दे दिया, तो इमाम जुफर और इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जैसे ऐन के अंदर ज्यादती आती है तो जिसकी ऐन होती है उसी के वो बच्चे होते हैं। इसी तरह यहां पर भी दोनों ने सरमाया मिलाया है, जब सरमाया दोनों का है तो नफा भी दोनों का होगा, और जितना जितना सरमाया है दोनों का उतना उतना ही दोनों का नफा भी होगा भाई, उसमें कमी बेशी नहीं की जा सकती। मालूम हुआ इमाम जुफर और इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक शिरकत के अंदर जो नफा हासिल होता है वो इसी तरह है जैसे ऐन के अंदर नमा आ जाए, बढ़ोतरी और अफजाइश आ जाए। तो कहते हैं फसारा रिबहुल माली बी मंजिलती नमा इल आयानी, नमा कहते हैं बढ़ोतरी और अफजाइश को भाई, आयान जमा है ऐन की, कोई मुअय्यन चीज भाई। तो कहते हैं फसारा रिबहुल माली, तो माल का नफा हो गया बी मंजिलती नमा इल आयानी, आयान की बढ़ोतरी के दर्जे में। फयस्तहिक्कु बिकद्रिल मिल्क फिल असली, तो लिहाजा ये दोनों शरीक जो हैं वो उस नफे के मुस्तहिक होंगे। बिकद्रिल मिल की फिल असली, असल के अंदर जितनी उनकी मिल्कियत है उसके बकदर, ये दोनों शरीक नफे के मुस्तहिक होंगे उतनी ही मिकदार जितनी असल के अंदर दोनों की मिल्कियत है भाई। तो कहते हैं फयस्तहिक्कु बिकद्रिल मिल्क फिल असली, तो दोनों शरीक नफे के मुस्तहिक होंगे असल के अंदर अपनी मिल्कियत के बकदर। यहां तक बात समझ में आ गई, असल से क्या मुराद है सरमाया, सरमाए में जितनी मिल्कियत है उसी के बकदर नफे में भी शिरकत होगी भाई। ये थी इमाम जुफर और इमाम शाफई रहिमहुमल्लाह की दलील। वो फरमाते हैं कि शिरकत ऐनान के अंदर जितना माल उतना ही नफा, नफे के अंदर कमी बेशी जायज नहीं, क्योंकि इसमें एक तो रिबहु मालम युजमन की खराबी लाजिम आएगी, और दूसरा यह कि जो नफा होता है यह उसी सरमाए की अफजाइश और नमा के दर्जे में है, तो जिसका जितना सरमाया उतना ही उसका नफा भी। अब आगे हमारी दलील आ रही है वलाना, और हमारी दलील जो है कौलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि आपने फरमाया अर रिबहु अला मा शरता वल वजीअतु अला कद्रिल मालैन। यहां तक है हदीस भाई। हुजूर फरमाते हैं अर रिबहु अला मा शरता के नफा उसी के बकदर होगा जो दोनों ने शर्त लगाई है, यानी जितना दोनों ने तय किया है। जैद और अमर ने शिरकत कर ली, तो जैद ने क्या शर्त लगाई कि नफे में मेरा हिस्सा 70% होगा और तुम्हारा हिस्सा 30% होगा। तो हदीस में आता है अर्रिबहु अला मा शरता कि नफा उसी के बकदर होगा जितनी दोनों ने शर्त लगाई है, जितना दोनों ने तय किया है, मुकर्रर किया है भाई। तो कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अर्रिबहु अला मा शरता, कि नफा उसी के बकदर होगा जितना दोनों ने शर्त ठहराया है। वल वजीअतु अला कद्रिल मालैनी, वजीअ कहते हैं नुकसान को, वल वजीअतु अला कद्रिल मालैनी, और नुकसान जो है वो दोनों मालों के बकदर होगा, यानी जिसका जितना माल है उसका उतना ही नुकसान में हिस्सा होगा। बात समझ में आ गई। ये है अहनाफ का जाबता भाई, इंदल अहनाफ नफे में कमी बेशी जायज है, जितना भी मुकरर कर लें, जितना भी आपस में तय कर लें, लेकिन नुकसान माल के बकदर होगा भाई। हदीस का तर्जमा दोबारा देख लीजिए, अर्रिबहु अला मा शरता, कि नफा उसी के बकदर होगा जितने की वो शर्त ठहरा लें, वल वजीअतु अला कद्रिल मालैनी, और नुकसान जो है खसारा जो है वो दोनों मालों के बकदर होगा। हदीस यहीं तक है भाई। आगे साहिब हिदायत फरमाते हैं वलम यफसिल, के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर मुतलकन फरमाया अर्रिबहु अला मा शरता, कि नफा उसी के बकदर होगा जितना दोनों शरीक आपस में तय कर लें, जितना आपस में वो दोनों मुकर्रर कर लें। इस हदीस के अंदर हुजूर अलैहि सलाम ने ये जिक्र नहीं फरमाया कि नफा माल के बराबर होगा, यानी सरमाए के अंदर जिसका जितना हिस्सा है नफे के अंदर भी उसका इतना ही हिस्सा होगा, हुजूर अलैहि सलाम ने यह नहीं फरमाया, बल्कि मुतलकन फरमाया है कि नफा उसी के बकदर होगा जितना दोनों शरीक आपस में तय कर लें। मालूम हुआ नफे के अंदर कमी बेशी भी जायज है। बात समझ में आ गई। तो यह माना है, कहते हैं वलम यफसिल, के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्क नहीं फरमाया, हुजूर अलैहि सलाम ने फर्क नहीं फरमाया। किस चीज में फर्क नहीं फरमाया? ये जो हुजूर ने फरमाया अर्रिबहु अला मा शरता, नफा उसी के बकदर होगा जितना दोनों आपस में शर्त ठहरा लें, तो हुजूर अलैहि सलाम ने यहां पर उस नफे के माल के साथ बराबर होने या ना होने को जिक्र नहीं फरमाया, मुतलकन फरमाया नफा जितना भी आपस में तय कर लें, तो हुजूर अलैहि सलाम ने कोई फर्क नहीं फरमाया माल के बराबर या कम होने के अंदर भाई। मुतलकन हुजूर अलैहि सलाम फरमा रहे हैं कि नफा उसी के बकदर होगा जितना दोनों आपस में तय कर लेंगे। मालूम हुआ नफे के अंदर कमी बेशी जायज है भाई। आगे देखिए वली अन रिबह कमा युस्तहक बिल माल युस्तहक बिल अमल। यहां से साहिब हिदायत अहनाफ की अकली दलील जिक्र कर रहे हैं। इंदल अहनाफ दोनों शरीकों का माल और सरमाया बेशक बराबर हो फिर भी नफे के अंदर कमी बेशी जायज है, और उसकी वजह यह है, वजह यह कि यह नफे का मुस्तहिक इंसान सिर्फ माल की वजह से नहीं होता बल्कि अमल की वजह से भी नफे का मुस्तहिक हो जाता है। जैसे अक़्द मुज़ारबत है, अक़्द मुज़ारबत में माल एक का है और अमल दूसरे का है और नफा दोनों आपस में तकसीम कर लेते हैं। तवज्जो है, तो माल एक का है, अमल दूसरे का है और नफा दोनों तकसीम कर रहे हैं। अब जो साहिब अमल है, जो तिजारत कर रहा है, वो जो मुजारिब है, उसका तो माल में कोई हिस्सा नहीं लेकिन फिर भी वो नफे का मुस्तहिक बन रहा है। मालूम हुआ नफे का मुस्तहिक इंसान सिर्फ सरमाए और माल की वजह से नहीं बनता बल्कि कभी कभार अमल की वजह से भी नफे का मुस्तहिक बन जाता है। और नी साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे कि बाज औकात दो शरीकों में से एक शरीक जो है वो तिजारत का ज्यादा माहिर होता है, तो वो तो कभी भी राजी नहीं होगा कि मेरा नफा दूसरे शरीक के बराबर होगा, क्योंकि दोनों में से मसलन एक को तिजारत ज्यादा नहीं आती और एक तिजारत का ज्यादा माहिर है, तो जाहिर सी बात है जो ज्यादा माहिर है वो अपने लिए ज्यादा नफे पर ही राजी होगा। या इसी तरह बाज औकात दोनों में से एक अमल के एतबार से ज्यादा होता है। मसलन दो आदमी आपस में शरीक हो गए, एक जो है वो अपना सारा वक्त तिजारत के अंदर लगा रहा है और दूसरा उसके और भी काम है, और भी मशगूलियात हैं, वो अपना सारा वक्त तिजारत में नहीं लगा रहा बल्कि कुछ वक्त तिजारत लगाता है, तो एक शरीक कुछ वक्त लगा रहा है और दूसरा शरीक ज्यादा वक्त लगा रहा है, ज्यादा काम कर रहा है, तो ज्यादा काम वाला तो कभी भी इस बात पर राजी नहीं होगा कि मेरा और दूसरे शरीक का नफा बराबर हो। जाहिर सी बात है वो नफे के अंदर भी ज्यादा हिस्से ही का मुतालबा करेगा। तो लिहाजा लोगों को हाजत पेश आती है कि वह कमी बेशी के साथ नफे को आपस में तय करें, तो जरूरत और हाजत की वजह से नफे के अंदर कमी बेशी जाए होगी। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वली अन रिबह कमा युस्तहक बिल माल युस्तहक बिल अमली, और इसलिए क्योंकि नफा जो है जैसे इसका इस्तेहकाक माल की वजह से होता है युस्तहक बिल अमली, इसी तरह नफे का इस्तेहकाक अमल की वजह से भी होता है कमा फिल मुजारबती, जैसे कि मुजारबत के अंदर है। तवज्जो है, इमाम जुफर और इमाम शाफई रहिमहुमल्ला की दलील ऊपर गुजरी, वो फरमाते हैं कि ये जो नफे के अंदर शिरकत आती है ये असल सरमाए यानी माल के अंदर शिरकत की वजह से आती है, लिहाजा जिस शरीक का जितना माल है नफे के अंदर भी उसका इतना हिस्सा होगा। तो साहिब हिदाया ने बतला दिए कि नहीं, सिर्फ ये माल की वजह से कोई शख्स नफे का मुस्तहिक नहीं होता बल्कि अमल की वजह से भी नफे का मुस्तहिक हो जाता है, लिहाजा माल के बकदर नफे का होना जरूरी नहीं है भाई। तो कहते वाले अन रिबह कमा युस्तहक बिल माल युस्तहक बिल अमली, इसलिए क्योंकि नफा जो है जैसे इसका इस्तेहकाक माल की वजह से होता है इसी तरह नफे का इस्तेहकाक अमल की वजह से भी होता है कमा फिल मुजारबती, जैसे कि मुजारबत के अंदर है वकद यकून अहदुहुमा अहज़क व अहदा, और कभी कभार दोनों में से जो है वो एक ज्यादा माहिर होता है अहज़क भाई, इसमें तफजील है हाजिक का माना है माहिर भाई, आप भी पढ़ते रहते हैं तबीब हाजिक भाई, माहिर तबीब जो है उसको तबीब हाजिक कहते हैं भाई। तो कहते हैं वकद यकून अहदुहुमा अहज़क व अहदा, और कभी कभार दोनों शरीकों में से एक जो है वो ज्यादा माहिर होता है व अहदा, और ज्यादा हिदायत याफ्ता होता है यानी तिजारत को ज्यादा समझने वाला होता है, और अक्सर अमला या कभी कभार दोनों में से एक शरीक वो ज्यादा अमल करने वाला होता है व अकवा और ज्यादा कवि होता है। तो कहते हैं और कभी कभार दोनों शरीकों में से एक जो है वो अमल के एतबार से ज्यादा होता है व अकवा और ज्यादा कवि होता है फला यर्ज़ा बिल मुसावाती, तो वो राजी नहीं होगा बराबरी पर, तो इस बात पर कभी भी राजी नहीं होगा कि नफे के अंदर बराबरी होगी, वो कहेगा भाई तिजारत सारी मैं करूंगा, तिजारत तो मैं जानता हूं दूसरे को तो तिजारत आती नहीं है लिहाजा मेरा नफा भी ज्यादा होना चाहिए, यह सारा अमल तो मैं करूंगा दूसरा तो थोड़ा सा अमल करेगा लिहाजा नफे के अंदर मेरा हिस्सा भी ज्यादा होना चाहिए, वो बराबरी पर कभी भी राजी नहीं होगा। क्यों कहते हैं फला यर्ज़ा बिल मुसावाती, लिहाजा वो शरीक बराबरी पर राजी नहीं होगा फमस्सतिल हाजत इला तफाजुली, तो कमी बेशी की हाजत पेश आ गई, और जब हाजत पेश आए तो शरीयत हाजत की वजह से भी तसर्रुफ की इजाजत दे देती है। आगे देखिए बिखिलाफ इश्तिराती जमी रिबह लिअहदिहिमा, यहां से साहिब हिदाया एतराज का जवाब दे रहे हैं, एतराज यह होता है कि दोनों शरीकों में से एक के लिए सारे नफे की शर्त लगाना यह जायज नहीं, जैद और अमर दोनों ने हकदे शिरकत किया और शर्त यह ठहराई कि सारे नफे का मुस्तहिक जैद होगा, तो याद रखो यह जायज नहीं है। तो मोतरीज एतराज करता है जिस तरह सारे नफे की शर्त किसी एक शरीक के लिए लगाना जायज नहीं, इसी तरह नफे की ज्यादती की शर्त एक शरीक के लिए लगाना यह भी जायज नहीं होना चाहिए। तो उसका जवाब देंगे साहिब हिदाया, साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे कि भाई अगर सारे नफे की शर्त एक शरीक के लिए लगा ली जाए फिर तो शिरकत ही खत्म हो गई, इस आकद का मकसद ही यह था कि नफे के अंदर दोनों शरीक होंगे, सिर्फ वैसे माल को आपस में मिलाना मकसूद नहीं था बल्कि मकसद यह था कि फिर आगे जब तिजारत करेंगे तो नफे के अंदर भी दोनों शरीक होंगे, तो जब नफे के अंदर ही शिरकत ना रही तो यह तो अकद शिरकत ही ना रहा भाई, क्योंकि यहां तो मकसूद ही क्या था नफे के अंदर शिरकत भाई। नीज इसी तरह साहिब हिदाया फरमाते हैं कि अगर नफे की शर्त किसी एक शरीक के लिए लगा दी जाए तो मुजारबत भी मुजारबत नहीं रहता, वो कर्ज या बिजात बन जाता है। तवज्जो है, एक है शिरकत, शिरकत के अंदर माल दोनों की तरफ से होता है अमल भी दोनों करते हैं और नफे में भी दोनों शरीक होते हैं, अगर शिरकत के अंदर भी एक शरीक के लिए नफे की शर्त लगा दी तो भी ये अक़्द शिरकत ना रहा, यहां तो शिरकत ही खत्म हो गई, और मुजारबत के अंदर भी माल एक का होता है मेहनत और अमल दूसरे का होता है और नफे के अंदर दोनों शरीक होते हैं, तो मुजारबत के अंदर भी अगर नफे की शर्त किसी एक के लिए लगा दी जाए तो वह अक़्द मुजारबत रहता ही नहीं, या तो वो कर्ज बन जाता है या वो बिजात बन जाता है। तवज्जो है, लिहाजा इसलिए शिरकत के अंदर या मुजारबत के अंदर एक शरीक के लिए सारे नफे की शर्त लगाना जायज नहीं है। देखिए भाई कहते हैं बे खिलाफ इश्तेराती जमी इर्रे फैली आहदी हिमा, बखिलाफ इसके के सारे नफे की शर्त लगा दी जाए दो शरीकों में से एक के लिए। लिअन्नहू यखरुजुल अक्दु बिही मिना शिरकती, क्योंकि इसकी वजह से तो यह अकद शिरकत से ही निकल जाता है। यहां तो अब शिरकत रही ही नहीं, क्योंकि मकसद ही क्या था, नफे के अंदर शिरकत, और वो शिरकत तो बाकी ही ना रही। तो कहते हैं लिअन्नहू यखरुजुल अक्दु बिही मिना शिरकती, क्योंकि इसकी वजह से तो अकद जो है वो शिरकत से ही निकल जाता है। वह मिनल मुजारबती अयजन, और मुजारबत से भी निकल जाता है, यानी अगर मुजारबत के अंदर भी दोनों में से एक के लिए नफे की शर्त लगा दी तो यह अकद मुजारबत ना रहेगा, यह कर्ज या बिजात बन जाएगा। मसलन जैद और अमर ने आपस में अकद मुजारबत कर लिया, जैद का माल है और अमर जो है वो तिजारत ज्यादा जानता है, वो तिजारत करेगा। जिसका माल हो उसको कहते हैं रब्बुल माल, भाई माल वाला, रब का क्या माना वाला, रब्बुल माल यानी माल वाला। याद रखो ये अरबी के अंदर रब का लफ्ज वाले के माना में आम इस्तेमाल होता है, इसी तरह याद रखो अब का लफ्ज है, अब का लफ्ज भी वाला के माना में इस्तेमाल होता है। जैसे अबुल खैर, अबुल खैर का माना है खैर वाला, अबुल खैर का क्या माना खैर वाला, वैसे लफ्जी तर्जमा तो बनता है खैर का बाप, लेकिन अबुल खैर खैर वाले को कहते हैं। इसी तरह अबू शर शर वाले को कहते हैं, एक आदमी का शर बहुत ज्यादा हो तो उसे अबू शर कहते हैं कि ये शर वाला आदमी है, और एक आदमी की खैर ज्यादा हो, हर एक को उसे नफा पहुंचता है तो उसको अबुल खैर कहते हैं कि ये खैर वाला है भाई, कि ये आदमी खैर वाला है, हर एक को इससे खैर पहुंचती है। तो रब्बुल माल का माना है माल वाला, तो मुजारबत के अंदर जिसका माल होता है उसको कहते हैं रब्बुल माल, और दूसरे आदमी का अमल होता है उसको कहते हैं मुजारिब भाई। तवज्जो है, तो मुजारबत के अंदर भी नफे के अंदर दोनों शरीक होते हैं, मुजारिब का भी हिस्सा होता है और रब्बुल माल का भी हिस्सा होता है। लेकिन मुजारबत के अंदर भी अगर सारा नफा किसी एक शरीक के लिए मुतायन कर दिया जाए तो इस सूरत में यह मुजारबत नहीं रहता, या यह कर्ज बन जाता है या ये बिजात बन जाता है। मसलन माल जैद का है और अमल अमर का है, और सारा नफा मसलन अमर लेकर जाएगा जो अमल करने वाला है, तो ये तो मुजारबत न रही, ये तो कर्ज बन गया। गोया जैद ने अमर को कर्ज दे दिया है, अमर उसके अंदर मेहनत करके नफा कमा रहा है और बाद में जैद का सारा सरमाया जैद को वापस कर देगा, तो ये तो कर्ज बन जाएगा, मुजारबत रहेगी ही नहीं जब सारे नफे की शर्त मुजारिब के लिए लगा दी। और इसी तरह अगर सारे नफे की शर्त रब्बुल माल के लिए लगा दी जाए तो फिर ये बिजात बन जाएगा। याद रखो बिजात इसे कहते हैं कि आप किसी को अपना सरमाया देते हैं तिजारत के लिए और वो आपके माल से हासिल होने वाला सारा नफा आपको दे दे, तो इसको कहते हैं बिजात। मसलन जैद जो है वो गल्ले का ताजिर है और बड़ा ताजिर है, तो आप जैद को अपना सरमाया दे देते हैं कि मैं तो तिजारत नहीं कर सकता तो आप मेरा सरमाया ले लीजिए, अपने सरमाए के साथ इसे भी कारोबार में लगा दीजिए और जो भी मेरे माल का नफा बनता हो वो सारा नफा मुझे दे दिया करें, तो इसको बिजात कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बिजात कहते हैं। तो जैद देखो तिजारत कर रहा है, उसका अपना कारोबार का सिलसिला चल रहा है, साथ उसने आपका माल भी मिला लिया और आपके माल का सारा नफा वो आप ही को दे रहा है, इसको क्या कहते हैं बिजात। तो बिजात का माना है सरमाया और पूंजी, यानी अपना माल बतौर सरमाए के किसी को देना। तो बात चल रही थी मुजारबत के अंदर अगर सारे नफे की शर्त जो है अमल वाले के लिए लगा दी जाए तो यह कर्ज बन जाता है, और अगर सारे नफे की शर्त रब्बुल माल के लिए लगा दी जाए फिर तो यह बिजात बन जाएगा भाई जी। सारा माल किसका, जैद का, और वो किसको दिया है उसने, अमर को, और अमर इस जैद के सारे माल का नफा जैद ही को दे रहा है, ये तो मुजारबत ना हुई, ये तो बिजात हो गई भाई। बात समझ में आ गई। तो हासिल कलाम ये एतराज ये होता था कि ऐ साहिब हिदाया, अगर शिरकत के अंदर सारे नफे की शर्त किसी एक शरीक के लिए लगा दी जाए तो यह जायज नहीं। तो जब सारे नफे की शर्त एक शरीक के लिए जायज नहीं है तो जायद नफे की शर्त भी एक शरीक के लिए लगाना जायज नहीं होना चाहिए। तो उसका जवाब दिया कि नहीं, सारे नफे की अगर शर्त लगाएंगे फिर तो वह हकदे शिरकत ही नहीं रहेगा, और अगर मुजारबत है वो तो मुजारबत ही नहीं रहेगी, लिहाजा आप नफे की कमी बेशी को सारे नफे की शर्त पर कयास नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं बिखिलाफ इश्तिराती जमी रिफी ली आहदी हिमा, बिखिलाफ इसके के सारे नफे की शर्त लगा दी जाए दोनों शरीकों में से किसी एक के लिए, लिअन्नहु यखरुजुल अक्दु बिही मिन शिरकती, इसलिए क्योंकि इस शर्त की वजह से यह अकद शिरकत से निकल जाएगा, ये अब अकद शिरकत ही न रहेगा, व मिनल मुजारबती आयजान, और इस शर्त की वजह से यह अकद मुजारबत से भी निकल जाएगा, इला कर्ज इन कर्ज की तरफ, मुजारबत में भी अगर एक के लिए शर्त लगा देंगे तो यह मुजारबत से निकल जाएगा, इला कर्ज इन किसकी तरफ, कर्ज की तरफ, यह तो कर्ज बन जाएगा, बिश्तेरात ही लिल आमिली आमिल के लिए इसकी शर्त लगाने से, आमिल जो अमल कर रहा है उसके लिए नफे की शर्त लगाएंगे तो यह क्या बन जाएगा, ये कर्ज बन जाएगा, ये मुजारबत ना रहेगा, और इला बिजातिन या ये आकद मुजारबत से निकल जाएगा बिजात की तरफ, यानी बिजात बन जाएगा, बिश्तेराती ही ले रब्बिल माली, जब नफे की शर्त लगा दी जाए रब्बुल माल के लिए। बात समझ में आ गई। वहां दल अक्दु युशबिहुल मुजारबता, यहां से इमाम जुफर और इमाम शाफई रहमहुल्लाह के कौल का जवाब दे रहे हैं साहिब हिदाया। इमाम जुफर और इमाम शाफई रहमहुमल्लाह फरमाते थे अगर दोनों शरीकों का माल बराबर है तो नफा भी बराबर होगा, अगर आप एक के लिए जायद नफे की शर्त लगा देते हैं तो इसमें रिफ मालम युजमन की खराबी लाजिम आएगी। तो अब उसका जवाब दे रहे हैं कि ये जो शिरकत ऐनान है इसकी मुशाबहत मुजारबत के साथ भी है और इसकी मुशाबहत शिरकत मुफावजा के साथ भी है। बात किसकी चल रही है, शिरकत ऐनान की। हमारे नजदीक शिरकत ऐनान में नफे की कमी बेशी मुकर्रर करना जायज है, तो हम कहते हैं यह जो ऐनान है इसकी मुशाबहत मुजारबत के साथ भी है और इसकी मुशाबहत शिरकत मुफावजा के साथ भी है। शिरकत मुफावजा, भाई ये शिरकत ऐनान ये भी शिरकत है और मुफावजा भी क्या है, शिरकत है, तो नाम के एतबार से भी इस ऐनान की मुशाबहत है मुफावजा के साथ, नाम के एतबार से भी इस ऐनान की मुशाबहत है मुफावजा के साथ, ऐनान भी शिरकत और मुफावजा भी शिरकत, और नीज मुफावजा के अंदर जैसे दोनों शरीक अमल करते हैं, भाई मुजारबत के अंदर तो आपने पढ़ लिया माल एक का होता है और अमल दूसरे का, लेकिन शिरकत के अंदर तो दोनों अमल करते हैं, भाई दोनों शरीक अमल करते हैं, दोनों तिजारत करते हैं, तो ये जो ऐनान है इसकी मुशाबहत है मुफावजा के साथ, नाम के एतबार से भी कि दोनों का नाम शिरकत है और अमल के एतबार से भी कि दोनों के अंदर दोनों शरीक अमल करते हैं, मुफावजा के अंदर जैसे दोनों शरीक अमल करते हैं इसी तरह ऐनान के अंदर भी दोनों शरीक अमल करते हैं, मालूम हुआ ऐनान की मुशाबहत है मुफावजा के साथ, नाम के अंदर भी और दोनों के अमल करने के अंदर भी, भाई और नीज ये जो ऐनान है इसकी मुशाबहत मुजारबत के साथ भी है, भाई किस तरह मुजारबत के साथ इसकी मुशाबहत है, कहते हैं देखो मुजारबत के अंदर जैसे माल एक का होता है और अमल दूसरे का होता है तो गोया वो दूसरा पहले शख्स के माल में अमल कर रहा है, तो मुजारबत में एक शख्स दूसरे शख्स के माल में अमल करता है, तो शिरकत में भी इसी तरह है, शिरकत के अंदर भी दोनों शरीक अपना माल मिला देते हैं और फिर दोनों उस माल के अंदर तसरुफ करते हैं, तो हर शरीक अपने माल में भी तसरुफ कर रहा है और दूसरे शरीक के माल में भी तसरुफ कर रहा है क्योंकि हर शरीक दूसरे का वकील भी है जी। तो जिस तरह मुजारबत के अंदर एक शरीक दूसरे के माल में अमल करता है इसी तरह शिरकत के अंदर भी दोनों शरीक एक दूसरे के माल में अमल करते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के वकील होते हैं। तो मालूम हुआ ऐनान की मुशाबहत मुजारबत के साथ भी है, तो ऐनान की मुशाबहत मुजारबत के साथ भी और ऐनान की मुशाबहत मुफावजा के साथ भी है भाई। तो हमने दोनों मुशाबहतों पर अमल किया, और किस तरह अमल किया वो आगे साहिब हिदाया बतलाएंगे। यहां तक बात समझ में आ गई कि यह शिरकत ऐनान की मुशाबहत मुजारबत के साथ भी है और शिरकत मुफावजा के साथ भी है। तो कहते हैं वहाद अल आकद युशबिहुल मुजारबता, और यह आकद ऐनान जो है इसकी मुशाबहत मुजारबत के साथ है। मिन हैसु इन्नहु यअमलु फी माली शरीकी, इस हैसियत से कि यह अमल करता है अपने शरीक के माल में, जैसे मुजारबत में एक शख्स दूसरे के माल में अमल करता है, इसी तरह यहां शिरकत के अंदर भी दोनों शरीक एक दूसरे के माल में अमल करते हैं। तो ये कहते हैं वहाद अल आकद युशबिहुल मुजारबता, ये आकद जो है मुजारबत के मुशाबे है। मिन हैसु इन्नहु यअमलु फी माली शरीकी, इस हैसियत से कि इनमें से हर एक जो है अपने शरीक के माल में अमल करता है। व युशबिहु शिरकता, और ये ऐनान जो है शिरकत के भी मुशाबे है, यानी शिरकत मुफावजा के भी मुशाबे है। तो कहते हैं वयुशबिहु शिरकता, और ये आकद ऐनान जो है शिरकत के भी मुशाबे है। इस्मा व अमला, नाम के एतबार से और अमल के एतबार से ऐनान भी शिरकत है, और नीस जैसे मुफावजा में दोनों अमल करते हैं ऐनान में भी दोनों अमल करते हैं। तो कहते हैं वयुशबिहु शिरकत अस्मा व अमला, और ये ऐनान जो है ये शिरकत के भी मुशाबे है नाम के एतबार से और अमल के एतबार से। फइन्नहुमा यअमलानी, इसलिए क्योंकि दोनों अमल करते हैं, इसलिए क्योंकि दोनों अमल करते हैं। देखो ये फा का तर्जमा क्योंकि के साथ करेंगे। आपने उसूल फिका की किताबों में पढ़ा है कि ये जो फा है ये कभी कभार तालील के लिए आती है। तालील का माना है किसी चीज की इल्लत बयान करना, वजह बयान करना। तो ये फा तालील के लिए आती है। कभी फा से माकबल मालूल होता है, यानी जिस चीज की इल्लत बयान की जा रही है, और फा के बाद आगे उसकी इल्लत बयान की जाती है। और कभी इसका बरअक्स होता है, फा से पहले इल्लत बयान की जाती है और फा के बाद मालूल बयान किया जाता है। बात समझ में आ गई। तो ये ऐनान जो है ये शिरकत है नाम के एतबार से भी और अमल के एतबार से भी। भाई अमल के एतबार से ये शिरकत कैसे है? कहते हैं फइन्नहुमा यअमलानी, इसलिए क्योंकि ये दोनों अमल करते हैं, दोनों शरीक अमल करते हैं। भाई याद रखो, भाई याद रखो, ये जो मुजारबत है ना, मुजारबत के अंदर माल एक का होता है और अमल दूसरे का होता है। याद रखो, मुजारबत में अगर रब्बुल माल के अमल की भी शर्त लगा दी जाए तो मुजारबत ही बातिल है। माल जैद का है और अमल अमर कर रहा है, फिर तो अक़्द मुजारबत ठीक है। लेकिन अगर अमर ने शर्त लगा दी कि जैद भी मेरे साथ काम करेगा जो रब्बुल माल है, तो ये अक़्द जायज ही नहीं। भाई ये अक़्द जाए, क्योंकि मुजारबत जो है खिलाफुल कियास हदीस से साबित है और उसमें माल एक का होता है और अमल दूसरे का। तो लिहाजा यहां पर रब्बुल माल जो है वो जो माल वाला है उसके अमल की शर्त नहीं लगाई जा सकती। अगर उसके अमल की भी शर्त लगा दी कि रब्बुल माल को भी मेरे साथ काम करना पड़ेगा, तिजारत करना पड़ेगी, तो ये अक़्द मुजारबत ही बातिल है। तो मुजारबत में अमल एक का होता है, दूसरे के अमल की शर्त नहीं लगाई जा सकती, और शिरकत के अंदर दोनों अमल करते हैं। फर्क समझ में आ रहा है? तो कहते हैं फइन्नहुमा यअमलानी, इसलिए क्योंकि शिरकत के अंदर दोनों अमल करते हैं। फअमिलना बिशबहिल मुजारबती, अब बतला रहे हैं कि हमने दोनों मुशाबहतों पर अमल किया, ऐनान की मुशाबहत मुजारबत के साथ भी और ऐनान की मुशाबहत मुफावजा के साथ भी। तो हमने दोनों मुशाबहतों पर अमल किया, और वो इस तरह कि ऐनान की मुशाबहत है मुजारबत के साथ, लिहाजा इसमें रिफ़ु मालम युज़्मन भी जायज होगा। भाई आप पीछे पढ़ चुके हैं कि रिफ़ु मालम युज़्मन जायज नहीं है, क्योंकि नफा जो होता है वो जमान के बदले होता है। हदीस में आया है अल गुर्मु बिल गुनमी, नुकसान जो है वो नफे के बदले होता है। एक शख्स एक चीज का नुकसान उठा रहा है तो वो नफा भी हासिल करेगा उसका, लेकिन अगर एक शख्स पर एक चीज का जमान नहीं आता तो उसके लिए उसका नफा लेना भी जायज नहीं है। और मुजारबत के अंदर देखो, माल एक का है, अमल दूसरे का है, और नफे में दोनों शरीक हैं। और याद रखो, मुजारबत के अंदर अगर नुकसान हुआ तो वो सारा नुकसान रब्बुल माल का होगा, मुजारिब का कोई नुकसान नहीं, जो अमल कर रहा है उसका कोई नुकसान नहीं। तो देखो मुजारबत के अंदर मुजारिब पर माल का जमान तो नहीं आ रहा लेकिन वो नफे का मुस्तहिक बन रहा है, और जमान के बगैर नफे का मुस्तहिक बनना तो जायज नहीं है। लेकिन चूंकि मुजारबत खिलाफुल कियास हदीस से साबित है इसलिए यह जायज है। अगरचे इसमें रुफ़ मालम युज़मन की खराबी लाजिम आती है, कियास तकाजा करता है इसे जायज नहीं होना चाहिए, लेकिन खिलाफुल कियास मुजारबत हदीस से साबित है। बात समझ में आ गई? तो बात चल रही थी कि जो ऐनान है इसकी मुशाबहत मुजारबत के साथ है, और मुजारबत के अंदर तो रिफ़ मालम युज़मन जायज है, लिहाजा ऐनान की जब मुशाबहत मुजारबत के साथ है तो शिरकत ऐनान में भी रिफ़ मालम युज़मन जायज होगा। इमाम जुफर और इमाम शाफई रहमहुमल्ला फरमाते थे कि दोनों शरीकों का माल बराबर हो तो नफा भी बराबर होगा, नफे में कमी बेशी मुकर्रर नहीं की जा सकती, इसलिए क्योंकि इस सूरत में रिब्हु मालम युज़मन की खराबी लाजिम आती है। तो साहिब हिदाया फरमा रहे हैं कि चूंकि इस ऐनान की मुशाबहत मुजारबत के साथ है और मुजारबत के अंदर तो रिब्हु मालम युज़मन जायज है, लिहाजा ऐनान के अंदर भी रिब्हु मालम युज़मन जायज होगा। तो कहते हैं फामिल ना बिशबहिल मुजारबती, तो हमने मुजारबत की मुशाबहत पर अमल किया। वकुल ना, और हमने कहा यसिहुश तिरातुर रिबह मिन गैर ज़मानिन, कि इसके अंदर नफे की शर्त बगैर जमान के सही है। वयुश बिहु शिरकता, और इस ऐनान की मुशाबहत शिरकत के साथ भी है। हत्ता ला यबतुल बिश्तिरातिल अमल अलैहिमा, यहां तक कि दोनों के लिए अमल की शर्त लगाने से यह बातिल नहीं होता। भाई मैंने आपको अभी बतलाया कि मुजारबत के अंदर माल एक का होता है और अमल दूसरे का, अगर रब्बुल माल के लिए भी अमल की शर्त लगा दी जाए तो यह अक़्दे मुजारबत ही बातिल है। तवज्जो है? और शिरकत ऐनान में तो दोनों अमल करते हैं, वजह यह है कि इस ऐनान की मुशाबहत शिरकत मुफावजा के साथ है और मुफावजा के अंदर तो दोनों अमल करते हैं, इसलिए हमने भी कहा शिरकत ऐनान के अंदर भी दोनों अमल करेंगे। अगर इस बात की तरफ नजर की जाए कि यह ऐनान की मुशाबहत तो किसके साथ है, मुजारबत के साथ, और मुजारबत में तो दोनों के अमल की शर्त लगाई जाए तो वो अकद ही बातिल हो जाता है। इस ऐनान की मुशाबहत है मुजारबत के साथ, ये तकाजा कर रही है कि दोनों के अमल की शर्त लगाई जाए तो इस शिरकत ऐनान को बातिल होना चाहिए, क्योंकि इसकी मुशाबहत किसके साथ है, मुजारबत के साथ है, और मुजारबत में दोनों के अमल की शर्त लगाई जाए तो वो बातिल होता है, लिहाजा ये ऐनान में भी दोनों के अमल की शर्त लगाई जाए तो इसे क्या होना चाहिए, बातिल होना चाहिए। लेकिन यहां हमने इस ऐनान की मुफावजा के साथ मुशाबहत का एतबार किया और मुफावजा के अंदर तो दोनों अमल करते हैं और उनके दोनों के अमल की शर्त लगाने से भी वो अकद बातिल नहीं होता, तो ये ऐनान के अंदर भी दोनों के अमल की शर्त होगी और फिर भी यह अकद बातिल नहीं होगा। बात समझ में आ गई? फिर तर्जमा देख लीजिए, कहते हैं फामिल ना बिशा बहिल मुजारबती, तो हमने मुजारबत की मुशाबहत पर अमल किया। वकुल ना, और हमने कहा यसे खुश तेरा तो रिफ मिन गैरी जमानिन, के बगैर जमान के ही नफे की शर्त सही है। वयुश बिहु शिरकता, और ये जो ऐनान है इसकी मुशाबहत शिरकत के साथ भी है। हता लायब तुलुब इश्तिरात इल अमली अलैहिमा, यहां तक कि यह बातिल नहीं होता दोनों शरीकों के लिए अमल की शर्त लगाने से। यहां तक बात समझ में आ गई? और यहां याद रखना हत्ता ला यबतुलू, ये हत्ता नसब नहीं देगा क्योंकि ये हत्ता तफरी के लिए है, हत्ता तफरी के लिए है कि इस ऐनान की मुशाबहत शिरकत के साथ है, इसीलिए दोनों के अमल की शर्त होने के बावजूद यह अकद बातिल नहीं होता। भाई यहां एक एतराज होता है, भाई एतराज ये कि आपने हमें बतलाया कि मुजारबत खिलाफुल कियास है क्योंकि मुजारबत के अंदर रिब्ह मालम युज़मन की खराबी लाजिम आती है। जब मुजारबत खिलाफुल कियास है तो आप ऐनान को मुजारबत वाला हुक्म कैसे दे सकते हैं? आपने हमें क्या कहा, कि ईनान की मुशाबहत है मुजारबत के साथ भी, और मुजारबत के अंदर रिफ़ु मालम युज़्मन जायज है तो ईनान के अंदर भी रिफ़ु मालम युज़्मन जायज होगा। तो एतराज होता है कि मुजारबत तो आपने हमें बतलाया खिलाफुल कियास है, और जो चीज खिलाफुल कियास हो उसके साथ तो दूसरी चीज को नहीं मिलाया जा सकता, उस पर तो दूसरी चीज को कियास नहीं किया जा सकता। कियास तो उन चीजों पर किया जाता है जो कियास के मुताबिक हो, यानी जो हमारी अकल में बात आती है, और अगर एक चीज की वजह हमारी अकल में ही नहीं आती तो उस पर दूसरी चीज को आप कैसे कयास कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो एतराज यह होता है कि मुजारबत के अंदर रिफ़ु मालम युज़्मन की खराबी लाजिम आती है, मालूम हुआ मुजारबत खिलाफुल कियास हदीस से साबित है, और आपने कहा कि ईनान की मुशाबहत मुजारबत के साथ है तो लिहाजा ईनान के अंदर भी रिफ़ु मालम युज़्मन जायज होगा क्योंकि ईनान की मुशाबहत मुजारबत के साथ है। तो यह इश्काल यहां होता है कि मुजारबत खिलाफुल कियास है तो ईनान को मुजारबत पर कैसे कियास किया जा सकता है। तो उसका जवाब याद रखना कि यहां पर ईनान को जो मुजारबत पर कियास किया गया और मुजारबत वाला हुक्म ईनान को दिया गया, उसके लिए जरूरी है कि यह जो मुजारबत है इसको भी खिलाफुल कियास करार न दिया जाए। और उसकी सूरत यह है कि हम यूं कहेंगे कि मुजारबत के अंदर रब्बुल माल जो है वह नफे का मुस्तहिक होता है माल की वजह से, और जो मुजारिब जो है वह नफे का मुस्तहिक बन रहा है अपने अमल की वजह से। मुजारिब नफे का मुस्तहिक बन रहा है अपने अमल की वजह से मुस्तहिक बन रहा है, और मुजारिब जब अपने अमल की वजह से नफे का मुस्तहिक बन रहा है तो अब मुजारबत खिलाफुल कियास ना रहा। मुजारबत खिलाफुल कियास इसलिए था ना कि अगर नुकसान हो जाए तो नुकसान सिर्फ रब्बुल माल पर आएगा मुजारिब पर नहीं आएगा, और नफा मुजारिब को भी मिल रहा है तो ये तो रिफ़ु मालम युज़्मन की खराबी लाजिम आ रही है। तो जवाब ये कि यहां पर मुजारिब को जो नफा मिल रहा है वो नफा नहीं है, वो दरअसल उसके काम की उजरत है भाई। लिहाजा मुजारबत के अंदर रिफ़ु मालम युज़्मन है ही नहीं, मालूम हुआ ये खिलाफुल कियास नहीं है बल्कि कियास के मुताबिक है। जैसे आप किसी काम के लिए मजदूर को लाते हैं और बाद में वो काम करने पर उसको उजरत देते हैं, तो जैसे अमल की वजह से मजदूर जो है वो उजरत का मुस्तहिक बनता है, इसी तरह मुजारबत के अंदर मुजारिब जो है वो भी अमल करने की वजह से उजरत का मुस्तहिक हो गया है। मालूम हुआ मुजारबत के अंदर मुजारिब को जो नफा मिल रहा है वो खिलाफुल कियास नहीं है, वो कियास के मुताबिक है। तो जब मुजारबत कियास के मुताबिक है तो ईनान को भी मुजारबत पर कियास करना सही होगा। बात समझ में आ गई। आगे देखिए भाई, काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वयजूज़ अय्या कदहा कुल्लु वाहिदिन मिन्हुमा बिबाज़ि मालिही दूनल बाज़। भाई यहां से आपको यह बतला रहे हैं कि शिरकत ईनान के अंदर दोनों का सारे माल पर अक़्दे शिरकत जरूरी नहीं है जी। दोनों शरीकों का अपने सारे माल पर अक़्दे शिरकत करना जरूरी नहीं। मुफावजा के अंदर तो जरूरी था कि दोनों शरीकों का माल भी बराबर होना चाहिए और दोनों अपने सारे माल पर अक़्दे शिरकत करेंगे। चुनांचे आपने पढ़ा था दोनों शरीकों में से अगर एक शरीक को कुछ जायद माल कहीं से मिल गया और ऐसा माल मिला जिसमें शिरकत हो सकती है, यानी दिरहम मिले या दीनार मिले या फुलूस नाफिका मिल गए भाई, चाहे मसलन वरासत के तौर पर उसको मिल गए या चाहे उसको किसी ने हिबा कर दिए यानी तोहफे के तौर पर दे दिए, तो दोनों का माल बराबर ना रहा तो मुफावजा बातिल हो जाएगा और वो ईनान बन जाएगा। लेकिन ईनान के अंदर दोनों शरीकों का माल बराबर होना जरूरी नहीं, और नीज इसके अंदर यह भी जरूरी नहीं है कि अपने सारे माल पर यह अक़्दे शिरकत करें, बल्कि अपने बाज़े माल पर भी शिरकत कर लें तो यह दुरुस्त है। मसलन जैद के पास 50 लाख माल है और वह सिर्फ 10 लाख पर किसी के साथ शिरकत करता है तो यह सही है भाई। तो कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वयजूज़ अय्या कदहा कुल वाहिदिन मिन्हुमा, और जायज है कि दोनों शरीकों में से हर एक जो है वो अकद कर ले बिबाज़ि मालिही दूनल बाज़ि, अपने बाज़े माल पर ना के बाज पर, यानी अपने सारे माल पर अकद ना करे बल्कि बाज पर करे, यह जायज है। लिअन्नल मुसावात फिल माल लैस बिशर्तिन फीही, इसलिए क्योंकि ईनान के अंदर माल के अंदर बराबरी शर्त नहीं है। इज़िल्ला लफ्ज ला यक्तजी ही, इसलिए क्योंकि ईनान का जो लफ्ज है वो बराबरी का तकाजा नहीं करता। ईनान का माना तो जाहिर होने के है, इसमें बराबरी वाला माना नहीं है। कहते हैं इज़िल लफ्ज़ ला यक्तज़ी ही, इसलिए क्योंकि ईनान का जो लफ्ज है वो बराबरी का तकाजा नहीं करता। वला यसहु इल्ला बिमा बयन्ना, और यह ईनान सही नहीं है मगर उन्हीं चीजों के साथ जिनको हमने बयान कर दिया। वो जो पीछे मुफावजा में बयान किया था कि शिरकत मुफावजा सिर्फ दिरहम दीनार और फुलूस नाफिका के साथ जायज है, तो कहते हैं ईनान भी सिर्फ उन्हीं चीजों के साथ जायज है। या इसी तरह अगर सोने चांदी के टुकड़े जो हैं उनमें लोग अबाहम तिजारत करते हो तो फिर उनमें भी जायज होगा। तो कहते हैं वला यसिहु, और ये अक़्दे ईनान सही नहीं है, इल्ला बिमा बयन्ना, मगर उन चीजों के साथ जिनको हमने बयान कर दिया कि अन्नल मुफावजत तसिहु बिही, कि उनके साथ अक़्दे मुफावजा सहीह है। लिलवजहिल्लज़ी ज़करनाहु, उस वजह से जो हमने जिक्र कर दिया, यानी जैसे शिरकत मुफावजा सिर्फ उन चीजों में सही है जो तायीन से मुतायन नहीं होती और वो दिरहम दीनार और फुलूस नाफिका हैं, और जो चीजें तायीन से मुतायन हो जाती हैं यानी सामान है या मकीलात और मौजूनात वगैरह, उनमें शिरकत ईनान भी सही नहीं है। वजह यह कि फिर अगर सामान वगैरह के अंदर भी शिरकत जायज हो जाए तो फिर इसमें रिबह मालम युजमन की खराबी लाजिम आती है। तो कहते हैं लिलवजहिल लदी दकरनाहु, उसी वजह से जो हमने जिक्र कर दिया कि इस सूरत में रिबह मालम युजमन की खराबी लाजिम आती है। वयजूज़ु अन यश्तरिका व मिन जिहति अहदिहिमा दनानीरु व मिन अल आखरी दराहिम, यहां से यह बतला रहे हैं कि दोनों का माल एक जिंस का होना भी जरूरी नहीं है। एक शरीक की तरफ से दिरहम है, दूसरे की तरफ से दीनार है, और फिर वह आखदे शिरकत कर लेते हैं तो यह भी जायज है। यह एक की तरफ से सफेद दिरहम है और दूसरे की तरफ से स्याह दिरहम है और दोनों आपस में आखदे शिरकत कर लेते हैं तो यह आखदे शिरकत भी जायज है। जबकि आपको आगे बतलाएंगे कि इमाम जुफर और इमाम शाफी रहमहुल्लाह जो हैं वो फरमाते हैं कि अक़्दे शिरकत में दोनों मालों का मिलाना जरूरी है, और इस तरह मिलाया जाए कि फिर पहचान ही ना रहे कि जैद का माल कौन सा था और अमर का माल कौन सा था। अगर पहचान हो रही है तो भी मालूम हुआ आपने तो मालों को मिला दिया, लेकिन ये मिले ही नहीं, जब मिले ही नहीं तो शिरकत भी ना आई। मसलन एक की तरफ से दिरहम है, दूसरे की तरफ से दीनार हैं, इनको अगर आप मिला भी दें फिर भी दिरहम अलग हैं, दीनार अलग हैं, आप आराम से इनको जुदा कर सकते हैं, तो गोया दोनों के माल मिले ही नहीं, जब मिले ही नहीं तो शिरकत भी सही नहीं। ये इसी तरह वो फरमाते हैं एक शरीक की तरफ से सफेद दिरहम है यानी नए और चमकदार दिरहम है, और दूसरे शरीक की तरफ से स्याह दिरहम है यानी पुराने दिरहम है, हत्ता के दोनों की अलग अलग पहचान हो रही है, तो अगर जे दोनों को मिला दिया लेकिन फिर भी पहचान तो हो रही है कि कौन से दिरहम जैद के हैं और कौन से अमर के हैं, लिहाजा इस सूरत में भी अक़्दे शिरकत सही नहीं इमाम जुफर और इमाम शाफई रहमहुल्लाह के नजदीक। जबकि याद रखो इंदल अहनाफ, दोनों मालों की जिन्स अलग अलग हो या दोनों एक दूसरे से पहचाने जाएं फिर भी अक़्दे शिरकत जायज है, बल्कि हमारे नजदीक यानी इंदल अहनाफ दोनों मालों का मिलाना भी जरूरी नहीं है। जैद अपना माल अपने पास रखता है, अमर अपना माल अपने पास रखता है, लेकिन आपस में अकद कर लेते हैं कि आज के बाद हम जो भी बैउ शिरा करेंगे शिरकत के इरादे से तो उसके अंदर हम दोनों शरीक होंगे, तो दोनों ने एक दूसरे को अपना वकील बना दिया, तो लिहाजा माल बेशक नहीं मिलाया लेकिन फिर भी अकदे शिरकत सही है। जैद तिजारत की नीयत से जो भी चीज खरीदेगा तो वो निसफ तसरुफ तो जैद अपने लिए कर रहा है और निसफ तसरुफ अपने शरीक के लिए कर रहा है उसकी तरफ से वकील होकर। तो जब निसफ तसरुफ वो अपने शरीक की तरफ से कर रहा है तो उसका जमान भी उस शरीक पर आएगा, और नीज जब जमान उस शरीक पर आ रहा है तो इस नफे के अंदर भी वो शरीक होगा। भाई बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वयजूज अयश तरीका, और ये जायज है कि दोनों शरीक हो जाएं। वह मिंजी हती अहद ही मा दना नीरू, और दोनों में से एक की जानिब से दीनार हो। वह मिनल आखर ही दरा हिमो, और दूसरे की जानिब से दिरहम हो। वह कजा मिन अहद ही मा दरा हिमो बीजुन, और इसी तरह दोनों में से एक की जानिब से सफेद दिरहम हो। बीस जमा है अबयज की, और अबयज का क्या माना सफेद, और अबयज कौन सा सिगा है अबयज, याद रखो अबयज ये सिफत मुशब्बा है। बज़ाहिर तुलबा को धोखा लगता है, वो समझते हैं शायद इसमें तफजील है, अगर ये इसमें तफजील होता तो अबयज का माना होता ज्यादा सफेद, हालांकि अबयज का माना ज्यादा सफेद नहीं बल्कि सफेद है। अलबत्ता वजन इसका वही है जो इसमें तफजील का है, इसमें तफजील का वजन भी अफअल और इस सिफत मुशब्बा का वजन भी अफअल है। तो ये जो अफअल है इसको अफअलु सिफ्ती कहते हैं, यानी ये सिफत मुशब्बा है, सिफत वाला अफअलु है भाई, तफजील वाला अफअलु नहीं है भाई। तो ये 20 जमा है अबयज की। तो कहते हैं वकदा मिन अहदिहिमा दराहिमु बीजुन, और इसी तरह है हुक्म जब दोनों में से एक की तरफ से सफेद दिरहम हो। व मिनल आखर सूदुन, और दूसरे की तरफ से स्याह दिरहम हो। जी। सूद जमा है अस्वद की। जी। तवज्जो है जी। याद रखो अफालु सिफ्ती की जमा आती है फुअलुन वजन पर। जी। अफालु सिफ्ती की जमा फुअलुन वजन पर आती है, तो अस्वद की जमा सूद। इसी तरह अबयज जो है, अबयज उसकी जमा भी फुअलुन आनी चाहिए थी, बा पर पेश होनी चाहिए थी बुइजुन, लेकिन वहां या की वजह से माकबल बा को कसरा दे दिया गया, तो वो क्या बन गया बीज, वरना असल इस जमा का वजन फुअलुन है भाई। तो कहते हैं वकदा मिन अहदिहिमा दराहिमु बीजुन व मिनल आखरी सूदुन, और इसी तरह है जब दोनों में से एक की तरफ से सफेद दिरहम हो और दूसरे की तरफ से स्याह दिरहम। वकाल जुफर व शाफी रहिमहुमल्लाहु ताला ला यजूजु, और इमाम जुफर और इमाम शाफी रहिमहुमल्लाह फरमाते हैं कि जायज नहीं, यानी अगर दोनों के माल की जिन्स अलग है, एक की तरफ से दिरहम एक की तरफ से दीनार, या दोनों की सिफत अलग है कि वो पहचान होती है, एक के दिरहम सफेद हैं एक के दिरहम स्याह रंग के हैं, तो ये शिरकत जायज नहीं, क्योंकि उनके नजदीक माल का मिलाना इस तरीके पर कि पहचान ही ना हो सके कौन सा माल किसका है, ये जरूरी है भाई। तो कहते हैं वकाल जुफर व शाफी रहिमहुमल्लाह ताला ला यजूज़ु, और इमाम जुफर और इमाम शाफी रहिमहुमल्लाह फरमाते हैं कि यह जायज नहीं है। वहादा बिना उन अलश तेरातिल खलती व आदमी ही, और ये मिलाने और न मिलाने की शर्त लगाने की वजह से है कि उनके नजदीक दोनों मालों का मिलाना शर्त है कि पहचान ही ना हो सके, और इंदल अहनाफ ये शर्त नहीं है। तो कहते हैं वहादा, और ये जो इख्तिलाफ है बिना उन अलश तेरातिल खलती व आदमी ही, ये बिना बर खल्त और आदम खल्त की शर्त पर है। तर्जमा समझ में आया, फिर जरा तर्जमा देख लीजिए। वहादा और ये जो इख्तिलाफ है बिना उन अलश तेरातिल खलती व आदमी ही, ये मिलाने और न मिलाने के शर्त होने की बिना पर है। ये इख्तिलाफ मिलाने और न मिलाने के शर्त होने की बिना पर है। फइन नाइंदहुमा शर्तुन, भाई आपकी किताब में भी ये इबारत इसी तरह है, फइन नाइंदहुमा शर्तुन, याद रखो ये इबारत दुरुस्त नहीं है भाई, ये इन्ना के साथ हा जमीर भी होनी चाहिए, फइन्नहु इंदहुमा शर्तुन। तवज्जो है, फइन्नहु और हिदाया के बाद नुस्खों में यहां हा जमीर मौजूद है और वही दुरुस्त इबारत है। वजह यह कि इन्ना अपने इसम को नसब देता है, और यहां एक तो बात पूरी नहीं बनती फइन्ना इंदहुमा शर्तुन, और अगर बात पूरी भी होती तो फिर यह शर्तन होना चाहिए था भाई। तो यहां हिदाया के दीगर नुस्खों में फइन्नहु है भाई, और वही सही इबारत है। कहते हैं फइन्नहु इंदहुमा शर्तुन, इसलिए क्योंकि ये मिलाना ये इमाम जुफर और इमाम शाफई रहमहुमल्लाह के नजदीक शर्त है। वला यतहक्कु ज़ालिका फी मुख्तलिफ़ैल जिन्सी, असल में था मुख्तलिफ़ैनी, फिर नून इजाफत की वजह से गिर गया। तो कहते हैं वला यतहक्कु ज़ालिका फी मुख्तलिफ़ैल जिंसी, और ये पाया नहीं जा सकता दो मुख्तलिफ जिंसों में। इमाम जुफर और इमाम शाफई रहमहुमल्ला के नजदीक दोनों मालों का मिलाना शर्त है, और जब दोनों की जिंस ही अलग हो या दोनों की सिफत अलग हो तो मिला भी दें फिर भी मिलना तो ना पाया गया, पहचान तो हो रही है कि दिरहम किसके हैं और दीनार किसके हैं, या सफेद दिरहम किसके हैं और स्याह दिरहम किसके हैं, वो पहचान हो रही है। तो कहते हैं इसलिए क्योंकि ये मिलाना शर्त है, वला यतहक्कु ज़ालिका फी मुख्तलिफ़ैल जिंसी, और दो मुख्तलिफ जिंसों के अंदर ये पाया नहीं जा सकता यानी मिलना नहीं पाया जा सकता। वसनुबय्यिनुहु मिन बादु इंशा अल्लाह ताला, और अन करीब हम इसको बाद में इंशा अल्लाह ताला बयान करेंगे, एक सफे के बाद आगे फिर साहिब हिदाया तफसील बयान फरमाएंगे कि हमारे नजदीक माल का मिलाना शर्त नहीं, और इमाम जुफर और इमाम शाफई रहमहुल्लाह के नजदीक माल का मिलाना शर्त है। आगे देखिए, قال وما اشتراه كل واحد منهما للشركة طولب بثمنه دون الآخر। भाई साहिब हिदाया ने आपको बतलाया था कि शिरकत ईनान के अंदर दोनों शरीक एक दूसरे के वकील तो होते हैं, कफील नहीं होते। जब दोनों एक दूसरे के कफील नहीं हैं तो दोनों शरीकों में से एक जो है कोई चीज खरीदेगा तो समन का मुतालबा उसी से हो सकता है जिसने अकद किया है, उसके दूसरे शरीक से समन का मुतालबा नहीं हो सकता क्योंकि वो इसका कफील नहीं है। भाई तो कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वमश्तरा हुकुल वाहिदिन मिनहुमा, और दोनों शरीकों में से हर एक जो चीज भी खरीदेगा लिशिरकति शिरकत के लिए तूलिब बिसमनी ही, तो उसी से उसके समन का मुतालबा किया जाएगा दून अल आखरी, ना के दूसरे से, दूसरे शरीक से समन का मुतालबा नहीं किया जा सकता। लिमा बैयन्ना, उस वजह से जो हमने बयान कर दिया कि अन्नहु यतज़म्मनुल वकालत दूनल कफालती, कि ये आक़दे ईनान जो है ये वकालत को मुतज़म्मिन है, कफालत को मुतज़म्मिन नहीं है। वल वकील हुवल असलु फिल हुकूकी, और वकील जो है वही असल होता है हुकूक के अंदर। याद रखो बेउ शिरा के अंदर हुकूक अकद का ताल्लुक वकील से ही होता है। मैंने एक आदमी से कहा कि जाओ जाकर मेरे लिए गाड़ी खरीद लाओ, तो ये वकील गया और कहीं इसने गाड़ी खरीद ली। तो याद रखो ये जो खरीदारी वाला फेल है वकील ने किया है, लिहाजा गाड़ी का मुतालबा करना बाएअ से ये भी उस वकील ही का हक है, मेरा हक नहीं। वकील जाकर इसका मुतालबा नहीं कर सकता। अगर मैं बाए के पास चला भी जाऊं और कहूं कि भाई आपसे फलां ने गाड़ी खरीदी थी, वो मेरा वकील था, वो गाड़ी अब लाओ मेरे हवाले कर दो, तो बाए मुझे जवाब में कहेगा भाई मैं आपको नहीं जानता, मेरा मामला तो फलां आदमी के साथ है, वो जो वकील है वो खुद आए मैं गाड़ी उसके हवाले कर दूंगा। और नीज इसी तरह मेरे वकील ने बेउशिरा वाला फील किया है, लिहाजा समन का मुतालबा भी मेरे वकील से ही किया जाएगा, मुझसे आकर यानी मुवक्किल से आकर समन का मुतालबा नहीं किया जा सकता क्योंकि बेउशिरा के अंदर हुकूक अकद का ताल्लुक वकील से होता है। तो कहते हैं वल वकील हुवल असलु फिल हुकूकी, और वकील जो है वो हुकूक अकद के अंदर असल होता है यानी उसी से मुतालबा होता है और वही मुतालबा करता है। आगे देखिए, काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं सुमयर जो अला शरीकी ही, फिर वो मुश्तरी जो है अपने शरीक पर रुजो करेगा बेहसती ही, उसका जो हिस्सा बनता है उस शरीक का जो हिस्सा बनता है उसमें उस शरीक पर रुजो करेगा मीन हूं उस समन में से। भाई दोनों शरीकों में से एक ने कोई चीज खरीद ली है तो समन तो यही अदा करेगा, ये जो मुश्तरी है जिसने चीज खरीदी है लेकिन ये चीज उसने शिरकत के तरीके पर खरीदी है तो अपने शरीक पर समन के अंदर जितना उस शरीक का हिस्सा बनता है उस पर रुजू करेगा। तो कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं सुमयर जो अला शरीक ही बिहिस्सती ही मिनहू, फिर ये जो मुश्तरी है ये अपने शरीक पर रुजू करेगा बिहिस्सती ही जो शरीक का हिस्सा है मिनहू उस समन में से, उस समन में से जितना शरीक का हिस्सा बनता है उसमें उस पर रुजू करेगा। मानाहु, यहां से साहिब हिदायत मतन की वजाहत फरमा रहे हैं। मतन के अंदर क्या आया, दोनों शरीकों में से एक ने कोई चीज खरीदी है तो वह अपने शरीक पर उसके हिस्से के बकदर समन में रुजू करेगा। साहिब हिदायत बतला रहे हैं कि यह रुजू उस सूरत में करेगा जब इस मुश्तरी ने अपने माल से अदायगी की हो। अगर इसने माले मुश्तरका में से अदायगी की है फिर तो रुजू नहीं करेगा, क्योंकि मुश्तरका माल के अंदर तो शरीक का भी हिस्सा है भाई। तो कहते हैं मा ना हु, माना इसका यह है इदा अदा मिन माल नफ्सी ही, जब इस मुश्तरी ने अपने जाती माल में से अदायगी की हो। लिअन्नहु वकील मिन जिहतिही फी हिस्सतिही, इसलिए क्योंकि यह मुश्तरी जो है यह वकील है मिन जिहतिही अपने शरीक की जानिब से फी हिस्सतिही उसके हिस्से में। यह जो मुश्तरी है इसने ये मसलन गाड़ी खरीदी है तो सिर्फ अपने लिए खरीदी है या अपने शरीक के लिए भी खरीदी है? अपने शरीक के लिए भी खरीदी है, क्योंकि ये उसके हिस्से में उसकी तरफ से वकील है भाई। दोनों ने अकद किया है, दोनों एक दूसरे के वकील हैं। ये माना है लिअन्नहु वकील मिन जिहतिही फी हिस्सतिही, इसलिए क्योंकि ये मुश्तरी जो है अपने शरीक की तरफ से वकील है उसके हिस्से में। फइदा नकदा मिन माल नफ्सिही, तो जब इस मुश्तरी ने अपने जाती माल में से अदायगी की है तो रजा अलैही, तो अपने शरीक पर रुजू करेगा। फइन काना ला युअरफु ज़ालिका इल्ला बिकौलिही, और अगर इसको नहीं जाना जाता मगर उसके कौल के जरिए ही, मुश्तरी के सिर्फ कौल से ही खरीदने का और अदायगी का पता चल रहा है और किसी चीज से पता नहीं चल रहा। मसलन जैद अमर के पास आया कि भाई मैंने गुलाम खरीदा था शिरकत के लिए, लेकिन वह गुलाम तो हलाक हो गया, मर गया, तो अब आपके हिस्से में निसफ समन बनते हैं, वह मुझे अदा करें। तो जैद खरीदने को और अदायगी को जिक्र कर रहा है और कोई दलील वगैरह वहां मौजूद नहीं। तो इस सूरत में अगर शरीक भी यह बात तस्लीम कर लेता है फिर तो कोई इश्काल नहीं, वो अपने हिस्से के समान अदा करेगा। लेकिन अगर शरीक उसका इनकार कर रहा है कि नहीं मुझे यकीन नहीं आता कि तुमने कोई गुलाम खरीदा है शिरकत के इरादे से, तो फिर इस सूरत में जैद के जिम्मे बैयना लाजिम होगा कि वो गवाह पेश करे, क्योंकि आप जाब्ता पढ़ चुके हैं अलबैयना तो अलल मुद्दई वल यमीन अला मन अनकरा। तो जैद जब दावा कर रहा है कि मैंने एक गुलाम शिरकत के इरादे से खरीदा था और वह हलाक हो गया है, तो अब जैद पर बैयना पेश करना यानी दो गवाह पेश करना जरूरी है। और अगर जैद दो गवाह पेश न कर सका तो फिर अमर का कौल मोतबर होगा, क्योंकि अमर मुनकिन है और आप पढ़ चुके हैं कि कौल मुनकिर का मोतबर होता है कसम के साथ भाई। तो कहते हैं फइन कान ला युअरफु ज़ालिका, और अगर यह खरीदने का और अदायगी का पता नहीं चलता इल्ला बिकौलिही मगर उस खरीदने वाले के कौल से ही, फअलैहिल हुज्जतु, तो उस पर हुज्जत यानी बय्यना का पेश करना लाजिम है। लिअन्नहु यदई वुजूब अल माली, इसलिए क्योंकि यह मुश्तरी जो है यह माल के वजूब का दावा कर रहा है, फी जिम्मतिल आखरी दूसरे शरीक के जिम्मे में, वह हुआ युनकिरु इस हाल में कि दूसरा शरीक इसका इनकार कर रहा है। वल कौलु लिल मुनकिरी मा यमीनिही, और कौल जो है वो मुनकिर का मोतबर होता है साथ उसकी कसम के। तो अगर दूसरा शरीक वैसे ही तस्लीम कर लेता है फिर तो इश्काल ही कोई नहीं। इश्काल सिर्फ उस सूरत में बनता है जब दूसरा शरीक इस खरीदने का इनकार करे भाई। आगे देखिए भाई, قال واذا هلك مال الشركه او احد المالين قبل ان يشتري شيئا بطلت الشركه। यहां से साहिब हिदायत आपको यह बतला रहे हैं कि अगर दो आदमियों ने आपस में अक्ते शिरकत कर लिया लेकिन तिजारत शुरू करने से पहले ही कोई चीज खरीदने से पहले ही दोनों का माले शिरकत हलाक हो गया या दोनों में से एक का माले शिरकत हलाक हो गया तो इस सूरत में यह शिरकत ही बातिल हो जाएगी, क्योंकि अकद किस पर किया था? उस माल पर। जब वो माल ही ना रहा तो शिरकत भी ना रही। जैसे बैअ किसकी की जाती है? मबीए की, और मबीआ ही हलाक हो जाए सुपुर्द करने से पहले तो बैअ ही बातिल हो जाती है। तो कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं वह इदा हलका माल उस शिरकती औ अहदुल मालैनी, जब माले शिरकत हलाक हो जाए या दोनों मालों में से कोई एक हलाक हो जाए, कबल अं यश्तरिया शैअन, कबल इसके के दोनों खरीदें कोई चीज, तो बतलत इस शिरकत, तो शिरकत बातिल होगी। लिअन्नल माकूद अलैही फी अक्द शिरकतिल मालु, इसलिए क्योंकि अक्द शिरकत के अंदर जो माकूदुन अलैह है अल मालु, वो माल है। अक्द शिरकत में माकूदुन अलै माल है उस पर आकद किया है, तो कहते हैं लिअन्न अल माकूद अलै ही फी अक्द शिरकत, इसलिए क्योंकि अक्द शिरकत के अंदर जो माकूदुन अलै है यानी वो चीज जिस पर आकद किया गया है, अल मालू वो माल है, फइन्नहु यतअय्यनु फीही, इसलिए क्योंकि ये जो माल है ये अक्द शिरकत में मुतअय्यन हो जाता है, कमा फिल हिबति वल वसीयति, जैसे कि हिबा और वसीयत के अंदर है। भाई अभी तक आपने यह पढ़ा था कि ये दिरहम दीनार और फुलूस नाफिका ये तायीन से मुतायन नहीं होते, लेकिन याद रखो बाज औकात ये तायीन से मुतायन हो जाते हैं, जैसे दिरहम और दीनार पर अक्द शिरकत किया जाए या हिबा किया जाए या उनकी वसीयत की जाए। किस तरह, देखिए भाई, मसलन जैद ने और अमर ने आपस में अक्द शिरकत कर लिया, जैद भी 5 लाख रुपए ले आया, अमर भी 5 लाख रुपए ले आया और दोनों ने उनको मिला दिया, तो अब देखो ये जो माल है इस माल पर अक्द शिरकत हुआ है, ये माल मुतायन है, ये माल मौजूद है, तो अक्द शिरकत भी ठीक है। और अगर ये माल कोई चोरी करके ले गया या ये दरिया में गिर गया डूब गया, तो इस सूरत के अंदर जब माल हलाक माकूदुन अलैह हलाक तो आकद भी खत्म हो जाएगा। मालूम हुआ शिरकत के अंदर माल मुतायन होता है। यह तो वह सूरत थी जब दोनों ने माल को आपस में मिला लिया। अगर दोनों ने माल को आपस में मिलाया नहीं था और उससे पहले ही एक का माल हलाक हो गया, तो इस सूरत में भी अक्द शिरकत बातिल हो जाएगा। मसलन जैद ने 5 लाख अलग कर लिए, अमर ने भी अपने 5 लाख अलग कर लिए कि इस पर हम दोनों अक्द शिरकत करेंगे, और दोनों ने अकद कर लिया आपस में, लेकिन उसी रात अमर के पास से उसका माल कोई चोरी करके ले गया, तो देखो वो माल ही बाकी ना रहा जिस पर अमर ने अकद शिरकत किया था, लिहाजा इस सूरत में भी अकद शिरकत बातिल हो जाएगा। ये तो वो सूरत थी कि अमर के अपने पास से ही उसका वो माल शिरकत चोरी हो गया। दूसरी सूरत यह है कि अमर ने अपना माल जैद को दे दिया लेकिन जैद ने अभी दोनों मालों को मिलाया नहीं, तो ये अमर का माल जैद के पास बतौर अमानत के मौजूद है और वो इसके साथ अपना माल भी मिलाएगा, लेकिन अपना माल मिलाने से पहले ही अमर का माल कोई जैद से चुरा कर ले गया, तो इस सूरत में भी अक्द शिरकत बातिल हो जाएगा। तवज्जो है, क्योंकि वैसे तो माल मुतायन नहीं होता, लेकिन जब किसी को बतौर अमानत के माल दे दिया जाए या शिरकत के लिए मुतायन कर लिया जाए, तो फिर वो माल तायीन से मुतायन हो जाता है। तो जब तक वो माल है अक्द शिरकत भी है, और दोनों माल या दोनों में से एक का माल जाया हो गया तो अक्द शिरकत भी बातिल होगा। भाई इसी तरह याद रखो, वैसे तो दिरहम और दीनार मुतायन नहीं होते, लेकिन हिबा के अंदर जो है दिरहम दीनार मुतायन हो जाते हैं। मसलन मेरे सामने 100 दिरहम पड़े हुए हैं, मैंने कहा ये जो 100 दिरहम हैं ये मैंने जैद को हिबा कर दिए, ये 100 दिरहम मैंने जैद को हिबा कर दिए, या मैं जैद से कहता हूं कि ये दिरहम मैंने तुम्हें दे दिए, ये दिरहम ले जाओ। जैद ने अभी ये दिरहम नहीं उठाए थे कि ये दिरहम दरिया में गिरे और डूब गए, तो अब देखो मालूम हिबा बातिल हो गया। हिबा क्या हुआ? बातिल हो गया, क्योंकि यही दिरहम तो मैंने हिबा किए थे, और हिबा के अंदर भी दिरहम क्या हो जाते हैं? मुतायन हो जाते हैं। तो जब महूब ही बाकी ना रहा तो हिबा भी बाकी ना रहा। भाई इसी तरह वसीयत के अंदर देख लें भाई, मसलन एक तो सूरत यह है कि जैद वसीयत करता है कि मेरे मरने के बाद 10 लाख रुपए अमर को दे देना। अब देखो जैद ने माल मुतायन नहीं किया, मुतलकन कहा है मेरे माल में से 10 लाख अमर को दे देना। तवज्जो है, तो इस सूरत में तो जैद के मरने के बाद जैद के माल में से सुलुस के अंदर ये वसीयत नाफिज की जाएगी भाई। लेकिन अगर जैद रुपए या दिरहम सामने रखकर कहता है कि मेरे मरने के बाद ये वाला जो माल है ये अमर को दे देना, ये वाला माल, ये वाले दिरहम और दीनार अमर को दे देना, तो याद रखो इस सूरत में इशारा करने से ये माल मुतायन हो गया वसीयत के लिए। अब ये ही माल जैद के मरने के बाद अमर को मिलेगा। लेकिन अगर ये माल वसीयत हलाक हो गया, इसको कोई चोरी करके ले गया, ये जल गया, ये दरिया में गिरकर डूब गया, तो इन तमाम सूरतों के अंदर वसीयत बातिल हो जाएगी, क्योंकि वसीयत इस माल की थी, जब ये माल ही ना रहा तो वसीयत भी बाकी ना रहेगी। बात समझ में आ गई? मालूम हुआ बाज़ औकात माल यानी दिरहम और दीनार वगैरह वो तायीन से मुतायन हो जाते हैं। तो कहते हैं لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي عَقْدِ الشِّرْكَةِ الْمَالُ, इसलिए क्योंकि अक्द शिरकत के अंदर वो चीज जिस पर अकद किया गया है वो माल है, فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ فِيهِ, इसलिए क्योंकि माल जो है वो शिरकत के अंदर मुतायन हो जाता है, कमा फिल हिबति वल वसीयति, जैसे कि हिबा और वसीयत के अंदर कि उसमें भी माल मुतायन हो जाता है, وَبِهَلَاكِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ يَبْطُلُ الْعَقْدُ, और مَعْقُودٌ عَلَيْهِ के हला हो जाने की वजह से अकद बातिल हो जाता है, कमा फिल बैई, जैसे कि बैअ के अंदर है, बैअ किस चीज की जाती है, मबीए की, तो मबीआ माकूदुन अलैह है और माकूदुन अलैह हलाक हो जाए सुपुर्द करने से पहले तो अकद ही बातिल हो जाता है, तो मबीआ हलाक हो जाए सुपुर्द करने से पहले तो बैअ ही बातिल हो जाएगी। तो कहते हैं वबी हलाक इल माकूदी अलै ही अब तुलुल अकदू, और माकूदुन अलै के हलाक होने की वजह से अकद बातिल हो जाता है, कमा फिल बैई, जैसे कि बैअ के अंदर है, बिखिलाफिल मुजारबती वल वकालतिल मुफरदती, बखिलाफ मुजारबत के और वकालत मुफरदा के, लिअन्नहु ला यतअय्यनु समनानि फीहिमा बितअय्यिनि, क्योंकि इनके अंदर समन जो है वो तायीन से भी मुतायन नहीं होते, यानी दिरहम और दीनार तायीन से भी मुतायन नहीं होते, वह इन नमा यतायनानि बिल कब्जी, और ये दिरहम और दीनार इनमें मुतायन होते हैं कब्जे की वजह से, अलामा उरिफा, उस वजह से जो जाना गया है। भाई देखिए याद रखो, ये जो मुजारबत है और वकालत मुफरदा, वकालत मुफरदा के जरिए दरअसल एहतराज किया, वो वकालत जो शिरकत में या रहन के अंदर आती है। भाई दो आदमी आपस में अकद शिरकत करते हैं तो अकद शिरकत के अंदर यह जरूरी नहीं कि वो वकालत को अलग से जिक्र करें, जब आपस में कह दिया हम दोनों ने अकद शिरकत कर लिया तो उसके जिम्मन में खुद ब खुद वकालत आ जाएगी, दोनों एक दूसरे के वकील बन जाएंगे, क्योंकि जब दोनों एक दूसरे के वकील हैं तब ही एक दूसरे पर समन का जमान भी आएगा और फिर उसी की वजह से नफे के अंदर भी शिरकत आएगी। तो जब भी अकदे शिरकत किया जाएगा उसमें वकालत को जिक्र करें या ना करें खुद ब खुद जिमनन वकालत साबित हो जाएगी। और इसी तरह याद रखो, इसी तरह याद रखो, जब किसी के पास आप कोई चीज रहन रखवाते हैं, आपको कर्ज की जरूरत थी, आप जैद के पास चले गए कि मुझे 10 लाख रुपए कर्ज चाहिए, तो जैद आपसे कहता है कोई चीज मेरे पास बतौर रहन के रखवाओ, तो आप अपनी गाड़ी जैद के पास बतौर रहन के रखवा देते हैं, तो जैद आपको कर्ज दे देता है। याद रखो, रहन के जिमन में भी वकालत आ जाती है, आपने अपनी ये जो गाड़ी जैद के पास बतौर रहन के रखवाई है, ये किस लिए रखवाई है, एतमाद के लिए कि अगर मैं आपका देन अदा न कर सका तो फिर आप इस गाड़ी को बेचकर अपना देन वसूल कर लेना। तो जब आप किसी के पास अपना माल रहन रखवाते हैं, गोया आपने उसको वकील बना दिया कि अगर मैं आपका देन अदा न कर सका, मसलन मेरी मौत आ गई, मेरी मौत आ गई, तो तुम मेरा यह माल बेचकर अपना देन वसूल कर लेना और बाकी माल जो है मेरे वारिसों के सुपुर्द कर देना। बात समझ में आ गई। तो मालूम हुआ शिरकत के अंदर भी जिमनन हर एक दूसरे का वकील होता है, इसी तरह रहन के अंदर भी मुर्तहिन जो है वो राहिन की तरफ से वकील होता है। वहां जिक्र नहीं किया जाता, वहां जिक्र नहीं किया जाता, लेकिन जब रहन रखवाया है तो माना यही है कि उसने दूसरे को वकील बना दिया है कि आप इस माल को बेचकर अपना देन वसूल कर सकते हैं अगर मैं देन अदा न कर सका। तो लिहाजा ये तो थी वकालत जिमनन जो शिरकत में आती है या रहन के अंदर आती है, और एक है वकालत मुफरदा, अलग वकालत, मैं आपसे कहता हूं कि जाओ भाई जाकर मेरे लिए एक गाड़ी खरीद कर ले आओ, तो ये है वकालत मुफरदा, ये शिरकत के जिमन में नहीं आ रही या रहन के जिमन में नहीं आ रही, बल्कि बाकायदा अलग से मैं आपको एक काम में अपना वकील बना रहा हूं। तो यहां बात चल रही है मुजारबत की और वकालत मुफरदा की। भाई याद रखो, ये जो मुजारबत और वकालत मुफरदा है इनके अंदर कब्जे से पहले माल मुतायन नहीं, हां कब्जे के बाद माल मुतायन हो जाता है। मसलन जैद अमर के साथ अक्द मुजारबत कर लेता है कि माल जैद का होगा और अमल जो है वह अमर करेगा और नफा आपस में तकसीम करेंगे, तो जैद के पास 10 लाख रुपए थे जो उसने आकदे मुजारबत के लिए रखे हुए थे, अभी उसने वो अमर के हवाले नहीं किए, जैद के पास ही वो माल हलाक हो गया। तो जैद के पास माल हलाक होने से आकदे मुजारबत बातिल नहीं होगा, क्योंकि आकदे मुजारबत में कब्जे से पहले माल मुतायन ही नहीं है भाई। यूं समझा जाएगा जैद का वैसे 10 लाख माल हलाक हो गया, मुजारबत का माल अभी भी इसके जिम्मे है, इल्ला ये कि जैद खुद आमर को मना कर दे भाई। हां, जब मुजारिब इस माल पर कब्जा कर लेगा फिर अब माल मुतायन हो गया, अब माल मुतायन हो गया। लिहाजा मुजारिब के पास से अगर यह सारा माल चोरी हो गया तो इस सूरत के अंदर भी आकदे मुजारबत खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुजारबत के लिए यह माल मुतायन था, और जब माल ही बाकी ना रहा, माकूदुन अलैह ही बाकी ना रहा, तो आकदे मुजारबत भी बाकी नहीं रहेगा। इसी तरह मसलन जैद ने अमर को अपना वकील बना दिया कि जाओ मेरे लिए जाकर 10 लाख रुपए की एक गाड़ी खरीद लाओ। जैद ने अभी वो माल अमर को नहीं दिया, जैद के पास से वो माल चोरी हो गया या हलाक हो गया, तो इसकी वजह से याद रखो अमर की वकालत खत्म नहीं होगी, क्योंकि वकालत के अंदर कब्जे से पहले माल मुतायन नहीं होता। हां, अगर जैद ने यह माल अमर को दे दिया कि यह 10 लाख रुपए ले जाओ और इसके जरिए मेरी गाड़ी खरीद कर ले आओ, तो इस सूरत में याद रखो जब वकील ने उस माल पर कब्जा कर लिया अब यह माल मुतायन है गाड़ी खरीदने के लिए। लिहाजा अगर वकील के पास से यह माल चोरी हो गया तो इस सूरत में भी उस वकील की वकालत खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो माल जो गाड़ी खरीदने के लिए दिया गया था वो बाकी ही ना रहा भाई, तो वकालत भी खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं बिखिलाफिल मुजारबती वल वकालतिल मुफरदती, बखिलाफ मुजारबत और वकालत मुफरदा के, लिअन्नहु ला यतअय्यनु समनान फीहिमा बितअय्यीनी, इसलिए क्योंकि दोनों समन जो है यानी दिरहम और दीनार जो है वो इस मुजारबत और वकालत मुफरदा के अंदर तायीन से भी मुतायन नहीं होते। व इन्नमा यतअय्यनान बिल कब्ज़, और ये दिरहम और दीनार जो है वो कब्जे के बाद मुतायन होते हैं, अलामा उरिफा, उस वजह से जो जाना गया है। वहां दा जाहिरुन फीमा इदा हलकल मालानी, दलील चल रही है, साहिब हिदायत जिक्र फरमा रहे हैं कि दो आदमियों ने अक़्द शिरकत किया और अक़्द शिरकत के बाद अभी इन्होंने तिजारत शुरू नहीं की, किसी चीज को खरीदा नहीं है, उससे पहले ही दोनों का माल हलाक हो गया या एक का माल हलाक हो गया, तो इस सूरत में अक़्द शिरकत ही बातिल हो जाएगा। इसलिए क्योंकि शिरकत के अंदर कब्जे से पहले ही माल मुतायन हो जाता है, जैसे हिबा और वसीयत के अंदर कब्जे से पहले ही माल मुतायन हो जाता है भाई, जबकि मुजारबत और वकालत मुफरदा जो है उसके अंदर कब्जे से पहले माल मुतायन नहीं होता, कब्जे के बाद माल मुतायन होता है। तो कहते हैं वहां दा जाहिरुन फीमा इदा हलकल मालानी, और यह बात जाहिर है यानी शिरकत का बातिल होना जाहिर है। कहते हैं वहां दा जाहिरुन, और यह शिरकत का बातिल होना जाहिर है, फीमा इदा हलकल मालानी, उस सूरत में जब दोनों माल हलाक हो जाएं, जब दो शरीक हैं और दोनों का माल शिरकत हलाक हो जाए, तो इस सूरत के अंदर जब माल हलाक, माकूदुन अलैह हलाक, तो आकद भी खत्म हो जाएगा। तो इस सूरत में शिरकत का बातिल होना जाहिर है। तो कहते हैं वहां दा जाहिरुन फीमा इदा हलकल मालानी, और यह शिरकत का बातिल होना उस सूरत में तो जाहिर है जब दोनों माल हलाक हो जाए। वकदा इदा हलका अहदुहुमा, और इसी तरह है मसला जब दोनों मालों में से कोई एक हलाक हो जाए, यानी दोनों शरीकों में से एक का माल हलाक हो जाए, तो इस सूरत के अंदर भी शिरकत बातिल हो जाएगी। भाई क्या वजह है फिर क्यों शिरकत बातिल होगी, एक का माल हलाक हुआ है दूसरे का माल तो हलाक नहीं हुआ। कहते हैं वजह यह कि जैद और अमर में आकद शिरकत हुआ है, बेशक दोनों ने अभी अपना माल मिलाया नहीं लेकिन आकद तो कर लिया, दोनों ने एक दूसरे को वकील तो बना दिया, तो जैद अपने माल के जरिए जो भी ब्याव शिरा कर रहा है उसके अंदर वो अमर की तरफ से वकील भी है और नफे के अंदर अमर का भी हिस्सा होगा। इसी तरह अमर भी जो ब्याव शिरा करेगा तो नफे के अंदर जैद का भी हिस्सा होगा। तो जब दोनों नफे के अंदर एक दूसरे का हिस्सा निकालेंगे तो इस शिरकत पर दोनों राजी हैं, लेकिन अगर अमर का माल हलाक हो गया और जैद का माल बाकी है तो जैद तो कभी भी इस बात पर राजी नहीं होगा कि मैं अपने माल के साथ ब्याव शिरा करूं और नफे का हकदार अमर भी हो, नफे का हकदार अमर भी हो। जैद तो सिर्फ इस वजह से राजी था कि जैसे जैद के नफे के अंदर अमर का हिस्सा था तो अमर के नफे में भी जैद का हिस्सा आ रहा था, तो जब अमर का माल ही हलाक हो गया तो अब जैद अपने नफे के अंदर अमर की शिरकत पर कभी भी राजी नहीं होगा। तो कहते हैं वकदा इदा हलका अहदुहुमा, और इसी तरह जब दोनों मालों में से कोई एक हलाक हो जाए तो इस सूरत में भी अक्द शिरकत बातिल होगा। लिअन्नहु मा रज़िया बिशिरकति साहिबिहि फी मालिहि, इसलिए क्योंकि दोनों में से हर एक जो है वो अपने माल के अंदर अपने साथी की शिरकत पर राजी नहीं है। इल्ला लियश्तरकहु फी मालिहि, मगर जबकि वो दूसरा भी अपने माल के अंदर इसको शरीक करे। दोनों में से हर एक अपने माल के अंदर दूसरे को शरीक कर रहा है इस वजह से कि दूसरा भी इस पहले को अपने माल में शरीक कर रहा है। तो कहते हैं लिअन्नहु मा रज़िया बिशिरकति साहिबिहि, इसलिए क्योंकि ये शरीक जो है अपने साथी की शिरकत पर राजी नहीं है। फी मालिही, अपने माल में। इल्ला लियश्तरकहु फी मालिही, मगर यह कि वो दूसरा भी अपने माल के अंदर इसे शरीक करे। फइदा फाता ज़ालिका, तो जब उस दूसरे शरीक का माल फौत हो गया और हलाक हो गया, लम यकुन राज़ियम बिशिरकतिही, तो अब यह उसकी शिरकत पर राजी नहीं होगा। फयबतुलुल अक़्दु, तो अक़्द ही बातिल हो जाएगा। लिहादमी फाइदती ही, फायदा ना होने की वजह से, क्योंकि अब आकद का कोई फायदा ही नहीं। आकद का तो फायदा क्या था कि नफे के अंदर दोनों शरीक होंगे, तो जब नफे के अंदर शिरकत ना रही तो अब आकद ही बातिल हो जाएगा। तो ये माना है फयबतुलुल अक़्दु, तो अक़्द ही बातिल हो जाएगा। लिअदमी फाइदतिही, उसका फायदा न होने की वजह से। वअय्युहुमा हलका, और दोनों मालों में से जो माल भी हलाक हो गया, हलका मिन माल साहिबिही, वो उसी माल वाले के माल में से हलाक हुआ है। जैद का माल हलाक हुआ तो जैद के माल में से हलाक हुआ, और अमर का माल हलाक हुआ तो अमर के माल में से हलाक हुआ। तो कहते हैं वअय्युहुमा हलका, और दोनों मालों में से जो भी हलाक हुआ, हलका मिन माल साहिबिही, वो अपने साहिब के माल में से ही हलाक हुआ है। इन हलका फी यदिही फज़ाहिरुन, भाई इधर देखिए, जैद और अमर दोनों में से एक का माल हलाक हुआ है, तो दो ही सूरतें हैं। मसलन जैद का माल हलाक हुआ है, जैद का माल या तो जैद के अपने कब्जे में हलाक हुआ होगा, या जैद ने अमर को तो दे दिया था लेकिन अभी दोनों ने मिलाया नहीं था, तो अमर के पास वो माल हलाक हुआ। तो कहते हैं भाई अगर जैद का माल जैद के पास ही हलाक हुआ है तो फिर तो बात जाहिर सी है कि ये जैद के माल में से ही हलाक हुआ है, और अगर जैद ने अमर को माल दे दिया था तो अमर के पास भी ये माल अमानत के दर्जे में है, और अमानत बगैर तअद्दी के किसी के पास हलाक हो जाए तो उस पर जमान नहीं आता भाई। तो जैद का माल अमर के पास भी हलाक हो जाए तो जैद ही का माल हलाक हुआ है, अमर का माल हलाक नहीं, क्योंकि अमर पर कोई जमान नहीं है भाई। तो कहते हैं इन हलका फी यदिही फज़ाहिरुन, अगर ये माल हलाक हुआ है उसी माल वाले के कब्जे में तो ये बात जाहिर है कि ये उसी का माल हलाक हुआ है। वकदा इदा कान हलका फी यदिल आखरी, और इसी तरह अगर ये माल जो है दूसरे के कब्जे में हलाक हुआ है तब भी उसी माल वाले का माल हलाक हुआ है। लिअन्नहु अमानतुन फी यदिही, इसलिए क्योंकि ये माल दूसरे के कब्जे में अमानत है। बिखिलाफ इमा बाद अल खलती, हां अगर दोनों ने माल मिला दिया था और उसके बाद कुछ माल हलाक हो गया तो अब तो दोनों माल मिल चुके हैं, दोनों मालों में फर्क ही ना रहा, लिहाजा इस सूरत के अंदर दोनों का माल हलाक हुआ है। अब दोनों माल एक दूसरे से जुदा नहीं है, अब पहचान नहीं है कि कौन सा माल किसका है भाई। तो कहते हैं बेखिलाफ ही मां बाद अल खलती, बेखिलाफ दोनों मालों के मिलने के बाद, यानी उसके बाद फिर जब माल हलाक हो, तो हैसु यहलिकु अल शिरकती, क्योंकि ये माल शिरकत पर हलाक होगा, यानी दोनों का माल हलाक होगा। लिअन्नहु ला यतमय्यज़ु, क्योंकि वहां फर्क नहीं होता, जब दोनों के माल मिल गए हैं और अब माल कुछ हलाक हुआ है तो अब फर्क नहीं हो सकता, लिहाजा यूं ही समझा जाएगा दोनों का माल हलाक हुआ है। तो कहते हैं लिअन्नहु ला यतमय्यज़ु, क्योंकि फर्क नहीं हो सकता। फयुजअलुल हलाकु मिनल मालैनी, तो वो जो हलाक शुदा माल है उसको दोनों मालों में से करार दिया जाएगा कि दोनों का माल हलाक हुआ है। भाई यहां तक वो सूरत जिक्र हो रही थी कि तिजारत शुरू करने से पहले ही दोनों का माल हलाक हुआ या दोनों में से एक का माल हलाक हुआ तो अक़्दे शिरकत ही बातिल हो जाएगा, लेकिन अगर दोनों में से एक ने तिजारत शुरू कर दी थी, एक ने कोई चीज शिरकत के लिए खरीद ली थी और उसके बाद दूसरे शरीक का माल हलाक हो गया, तो याद रखो इस सूरत में भी अक़्द शिरकत बातिल हो जाएगा। अलबत्ता वो चीज जो खरीद चुका है वो तो उसने उस वक्त खरीदी है जब अभी अक़्द शिरकत मौजूद था, लिहाजा ये जो खरीदी हुई चीज है ये शिरकत ही के तरीके पर रहेगी। अलबत्ता बाकी अक़्द शिरकत खत्म हो जाएगा क्योंकि दूसरे का माल हलाक हो गया, और जब दूसरे का माल हलाक हुआ तो अक़्द शिरकत ही खत्म हो गया। तो कहते हैं वह इन इश्तरा अहदुहुमा बिमालिही, और अगर दोनों शरीकों में से एक ने अपने माल के जरिए कोई चीज खरीदी, दोनों में से एक ने अपने माल के जरिए कोई चीज खरीद ली, वहां लका माल उल आखरी, और दूसरे का माल हलाक हो गया, काबला शिराई उसके खरीदने से पहले, उस दूसरे के खरीदने से पहले, एक ने तो खरीदारी कर ली और दूसरे ने अभी खरीदारी नहीं की थी कि उसके खरीदने से पहले ही उसका माल हलाक हो गया, तो ये काबला शिरा से मुराद ये जिस शख्स का माल हलाक हुआ है इसी की शीरा मुराद है, वो दूसरे की शीरा जो पीछे गुजरी वो मुराद नहीं। तवज्जो है, जैद और अमर ने शिरकत कर ली, जैद ने अपने माल के जरिए कुछ खरीदा और इधर अमर का माल हलाक हो गया, कबल इसके कि अमर इसके जरिए कुछ खरीदता, जैद ने तो कुछ खरीद लिया है लेकिन अमर के कुछ खरीदने से पहले ही अमर का माल हलाक हो गया, तो इस सूरत में भी अक़्द शिरकत बातिल हो जाएगा। अलबत्ता जैद ने जो चीज खरीदी थी वो तो अक़्द के दौरान खरीदी थी, उस वक्त तक तो अभी अक़्द बातिल नहीं हुआ था, तो उस चीज के अंदर अभी भी अक़्द शिरकत बाकी है। भाई बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वही निश्तरा अहदुहुमा बिमालिही, और अगर दोनों में से एक ने अपने माल के जरिए कोई चीज खरीद ली, वहां लका माल उल आखरी कबल शिराई, और दूसरे का माल हलाक हो गया, कबल शिराई उस दूसरे के कुछ खरीदने से पहले ही, फल मुश्तरा बैनहुमा अला माशा रहता, तो वो चीज जिसको खरीदा गया है वो इन दोनों के दरमियान मुश्तरका है, अला माशा रहता उसी तौर पर जो शर्त ठहराई थी, यानी जिस तरह मुकर्रर किया था। बात समझ में आ गई। बाज़ औक़ात दोनों का माल बराबर होता है, तो जो भी चीज खरीदेंगे आधे का मालिक एक है आधे का मालिक दूसरा है, यानी आधा सामान एक पर आता है आधा सामान दूसरे पर, और बाज़ औक़ात एक का माल दूसरे से दुगना होता है कि जो भी चीज खरीदेंगे उसमें से एक हिस्सा एक का होगा और दो हिस्से दूसरे के होंगे। तो कहते हैं फल मुश्तरा बैनहुमा अला मा शाराता, तो वो चीज जिसको खरीदा गया है वो इन दोनों के दरमियान मुश्तरका है उसी तौर पर जिस तरह दोनों ने आपस में शर्त ठहराया है, लिअन्न अल-मिल का ही न वका, इसलिए क्योंकि इस चीज पर जब मिल्कियत वाके हुई थी तो वका मुश्तरकम बैनहुमा, तो ये मिल्कियत दोनों के दरमियान मुश्तरका होकर वाके हुई थी, लिकियाम शिरकति वक्त शिराई, इसलिए क्योंकि खरीदने के वक्त तो शिरकत मौजूद थी, उस वक्त तो अक़्द शिरकत मौजूद था, फला यतगैरुल हुक्म बिहलाकि मालिल आखरी बादा ज़ालिक, फला यतगैरुल हुक्म, तो शिरकत का हुक्म बदलेगा नहीं, बिहलाकि मालिल आखरी दूसरे का माल हलाक हो जाने की वजह से, बाद अजालिका उस खरीदने के बाद, खरीदने के बाद उस खरीदी हुई चीज में तो दोनों की शिरकत आ चुकी है, लिहाजा उस खरीदारी के बाद दूसरे का माल अगर हलाक भी हो जाए तो उस खरीदी हुई चीज के अंदर शिरकत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो कहते हैं फला यतगैरुल हुक्म, तो शिरकत का हुक्म बदलेगा नहीं, बिहलाकि मालिल आखरी बादा जालिक, जब उस शिरा के बाद दूसरे का माल हलाक हो जाए, सुम शिरकत शिरकत आकदीन। भाई इधर देखिए, जैद और अमर दोनों ने अक़्द शिरकत की है, जैद ने अपने माल के जरिए तिजारत शुरू कर दी, उसने एक चीज खरीद ली है और उसके बाद अमर का माल कुछ खरीदने से पहले ही हलाक हो गया, तो जैद ने जो चीज खरीदी है उसमें अभी भी शिरकत बाकी है, लेकिन अब यह कौन सी शिरकत है, यह शिरकत मिल्क है या यह शिरकत अक़्द है। शिरकत मिल्कियत के अंदर आप जानते हैं एक शरीक दूसरे के हिस्से में तसर्रुफ नहीं कर सकता, मैंने और अमर ने मिलकर गाड़ी खरीद ली तो मैं सिर्फ अपने हिस्से में तसर्रुफ कर सकता हूं, अपना निसफ हिस्सा किसी को फरोख्त कर सकता हूं, अमर के हिस्से में तसर्रुफ नहीं कर सकता, लेकिन अक़्द शिरकत के अंदर दोनों शरीक एक दूसरे के हिस्से में भी तसर्रुफ कर सकते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के वकील होते हैं। तो जैद ने एक चीज खरीद ली और उसके बाद अमर का माल हलाक हो गया, तो यह खरीदी हुई चीज दोनों के दरमियान मुश्तरका है। तो यह कौन सी शिरकत है इस चीज के अंदर? शिरकत मिल्क है, यह शिरकत अक्द है। तो याद रखो, इमाम साहब के शागिर्द हसन इब्ने ज़ियाद रहमतुल्लाह फरमाते हैं, यह जो खरीदी हुई चीज है इसमें अब शिरकत मिल्क है, इसमें शिरकत मिल्क है, क्योंकि अमर का सारा माल जब खत्म हो गया तो अक़्दे शिरकत खत्म हो गया। जब अक़्दे शिरकत खत्म है तो अब सिर्फ इस खरीदी हुई चीज में दोनों की मिल्कियत बाकी है, तो हर एक अपनी मिल्कियत के बकदर इसमें तसरुफ कर सकता है। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नहीं, जिस वक्त इस चीज को खरीदा गया था उस वक्त अक़्दे शिरकत मौजूद था, तो लिहाजा इस खरीदी हुई चीज के अंदर अभी भी अक़्दे शिरकत मौजूद है। बाकी माल के अंदर तो अक़्दे शिरकत खत्म हो गया, लेकिन इस खरीदी हुई चीज में अभी भी अक़्दे शिरकत मौजूद है, लिहाजा इसके अंदर ज़ैद भी तसर्रुफ कर सकता है और अमर भी तसर्रुफ कर सकता है, क्योंकि दोनों में अक़्दे शिरकत मौजूद है इस चीज के अंदर और दोनों एक दूसरे के वकील हैं भाई। तो कहते हैं सुम शिरकतु शिरकतु अक़्दिन इंदा मुहम्मदिन रहिमहुल्लाहु ताला, फिर ये जो शिरकत है इस खरीदी हुई चीज के अंदर ये शिरकत अक़्द है इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह के नजदीक, खिलाफन लिल हसन इब्ने ज़ियाद रहमहुल्लाह, बखिलाफ हसन इब्ने ज़ियाद रहमहुल्लाह के, उनके नजदीक ये शिरकत अक़्द नहीं है बल्कि शिरकत मिल्क है। हता अन्न अय्यहुमा बाअजाज बैउहू, ये तफरीअ है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह के कौल पर। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह क्या फरमाते हैं, ये खरीदी हुई चीज इसमें अभी भी अक़्दे शिरकत है, जब अक़्दे शिरकत है तो दोनों इसके अंदर तसरुफ कर सकते हैं। ये माना है हता अन्न अय्यहुमा बा, यहां तक कि इन दोनों में से जिसने भी इस चीज को बेच दिया, जाज़ा बैउहू, तो उसकी बैअ जायज है क्योंकि इस चीज में दोनों का अक़्द शिरकत है। लिअन्न शिरकत क़द तम्मत फिल मुश्तरा, इसलिए क्योंकि शिरकत जो है वो तहकीक पूरी हो चुकी है इस खरीदी हुई चीज में। इस चीज को जब खरीदा गया था उस वक्त अक़्द शिरकत मौजूद था। तो कहते हैं लिअन्न शिरकत क़द तम्मत फिल मुश्तरा, इसलिए क्योंकि शिरकत जो है वो पूरी हो चुकी है इस खरीदी हुई चीज में। फला यंतकिज़ु बिहलाकिल माली, तो लिहाजा ये शिरकत नहीं टूटेगी माल के हलाक होने की वजह से, बाद तमामिहा, इसके पूरा हो जाने के बाद। जब इस खरीदी हुई चीज में शिरकत पूरी हो चुकी है तो बाकी का माल हलाक भी हो जाए तो उसकी वजह से इस खरीदी हुई चीज में शिरकत नहीं टूटेगी, यानी खत्म नहीं होगी भाई। तो ये माना है फला यंतकिज़ु बिहलाकिल माल इबादा तमामिहा, तो इस खरीदी हुई चीज में शिरकत के पूरा हो जाने के बाद माल के हलाक होने की वजह से यह शिरकत नहीं टूटेगी। यहां तक बात समझ में आ गई। आगे देखिए काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वयर्जिउ अला शरीकी ही बिहिस्सतिन मिन समनिही, भाई जैद और अहमद दोनों ने अक़्द शिरकत कर लिया और उसके बाद जैद ने शिरकत के लिए एक चीज खरीद ली और इधर अमर का सारा माल हलाक हो गया, तो ये जो खरीदी हुई चीज है इसमें अभी भी अक़्द शिरकत बाकी है। ये चीज जैद ने अपने लिए भी खरीदी थी और अमर के लिए भी खरीदी थी उसका वकील बनकर, लिहाजा अमर का जितना हिस्सा इसके समन में बनता है जैद उसमें अमर पर रुजू करेगा। ये माना है काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं वयर्जिउ अला शरीकी ही कि खरीदने वाला अपने शरीक पर रुजू करेगा बिहिस्सति मिन समनी ही उस चीज के समन में से जितना उस शरीक का हिस्सा है लिअन्नहु इश्तरा निस्फहु बिवकालती ही इसलिए क्योंकि इसने इस निसफ चीज को खरीदा है उस दूसरे की तरफ से वकालत की वजह से वनकदस समन मिम्मा लिनफ्सी ही और इसने समन की अदायगी की है अपने जाती माल में से तो लिहाजा ये अपने शरीक पर रुजू करेगा। वक़द बयन्ना हो और तहकीक हम ये बयान कर चुके हैं कि हर शरीक दूसरे की तरफ से वकील है। तो कहते हैं वक़द बयन्ना हो और तहकीक ये हम बयान कर चुके हैं हादा इदश्तरा अहदुहुमा बि अहदिल मालैनि अव्वलन सुम्मा हलका मालुल आखर, अब आगे तीसरी सूरत बयान करने लगे हैं। कहते हैं ये जो हमने बयान किया ये उस सूरत में था जब एक शरीक ने चीज को खरीदा और खरीदने के बाद दूसरे का माल हलाक हुआ जी। तो इस सूरत में यह चीज दोनों के दरमियान मुश्तरका होगी, लेकिन अगर एक शरीक का माल हलाक हो गया और उसके हलाक होने के बाद दूसरे शरीक ने अपने माल से कोई चीज खरीदी है तो उसका क्या हुक्म है? तो आपको बतलाएंगे कि यहां दो सूरतें बनती हैं। दोनों ने जब अक्द शिरकत किया था तो क्या वकालत को अलग से जिक्र किया था या नहीं। तवज्जो है, मैंने बताया था कि शिरकत को जिक्र किया जाए तो खुद ब खुद जिमनन वकालत भी आ जाती है। इसी तरह किसी के पास रहन रखवाया जाए तो जिमनन खुद ब खुद वकालत भी वहां आ जाती है। और बाज औकात अक्द शिरकत करते हुए बाकायदा वकालत को साफ लफ्जों में जिक्र किया जाता है। जैद और अमर आपस में अक्द शिरकत करते हैं, जैद कहता है कि हम इतने इतने माल पर अक्द शिरकत करते हैं और अमर कहता है मुझे कबूल है, तो दोनों ने अक्द शिरकत कर लिया। और साथ ही जैद यह भी कहता है कि आज के बाद हम दोनों तिजारत की नीयत से जो चीज भी खरीदेंगे वो शिरकत के तरीके पर होगा, और अमर इसको कबूल कर लेता है। तो देखो यहां पर वकालत को बाकायदा सराहतन अलग जिक्र कर दिया। तो अगर वकालत को सराहतन जिक्र नहीं किया तो उसका हुक्म और अगर वकालत को सराहतन अलग जिक्र किया था तो फिर उसका हुक्म और है। तवज्जो है, सूरत कौन सी जिक्र हो रही है कि जैद और अमर ने अक्द शिरकत किया और कुछ खरीदने से पहले ही अमर का माल हलाक हो गया, और अमर का माल हलाक होने के बाद अब जैद कोई चीज खरीदता है, अब कोई चीज खरीदता है। तो याद रखो, अगर वकालत अलग से जिक्र नहीं की थी तो जैसे ही अमर का माल हलाक हुआ तो अक्दे शिरकत खत्म हो गया। एक का माल जब हलाक हो जाए तो अक्दे शिरकत खत्म हो जाता है, तो अमर का माल जब हलाक हुआ तो अक्दे शिरकत खत्म हो गया। जब अक्दे शिरकत खत्म हो गया तो इसी अक्दे शिरकत के जिमन में वकालत भी थी, तो जब अक्द शिरकत खत्म तो अक्द वकालत भी खत्म हो गया। लिहाजा इसके बाद जैद अगर कोई चीज खरीदता है तो जैद ही के जिम्मे उसके समन है, अमर से वो मुतालबा नहीं कर सकता, क्योंकि जब शिरकत खत्म तो उसके जिमन में वकालत भी खत्म हो गई। उसके बाद जैद जो चीज खरीदेगा वो अपने लिए खरीद रहा है, वो शिरकत के तरीके पर नहीं खरीद रहा, क्योंकि अब जैद अमर की तरफ से वकील ना रहा भाई। लेकिन अगर शिरकत करते वक्त दोनों ने वकालत को सराहतन जिक्र किया था कि हम दोनों जो भी चीज खरीदेंगे उसमें हम एक दूसरे के वकील भी होंगे, तो शिरकत बेशक खत्म हो जाए फिर भी वकालत खत्म नहीं, क्योंकि वकालत को दोनों ने बाकायदा अलग जिक्र किया था, तो उसको खत्म करने के लिए अलग सराहत जरूरी है कि अब आज से हम दोनों एक दूसरे के वकील भी नहीं है। तो लिहाजा अगर दोनों ने वकालत को अलग जिक्र किया था और अमर का माल हलाक हो गया और उसके बाद फिर जैद कोई चीज खरीदता है तो जैद अभी भी अमर की तरफ से वकील है, लिहाजा इस खरीदी हुई चीज के समन में जितना हिस्सा अमर का बनता है जैद उस पर रुजू करेगा। बेशक अमर का माल हलाक हो चुका लेकिन यह जैद ने जो चीज खरीदी है यह अपने लिए भी खरीदी है और अमर के लिए भी खरीदी है, तो अमर पर भी रुजू करेगा और उससे निस्फे समन वसूल करेगा। तो कहते हैं हादा इदश्तरा अहदुहुमा बि अहदिल मालैनि अव्वलन, कहते हैं ये उस वक्त है जब दोनों में से एक ने दोनों मालों में से एक के जरिए पहले खरीदा, सुम्मा हलका मालुल आखरी, फिर दूसरे का माल हलाक हुआ। ऊपर वो सूरत बयान हो रही थी जब दोनों में से एक ने कोई चीज खरीदी है और उसके बाद दूसरे का माल हलाक हुआ, तो अक्द शिरकत खत्म होने से पहले जो चीज खरीदी है उसमें अभी भी शिरकत मौजूद है। तो कहते हैं हादा इदश्तरा अहदुहुमा, ये उस वक्त है जब दोनों शरीकों में से एक खरीद ले, बी अहदिल मालैनी, दोनों मालों में से एक के जरिए, अव्वलन पहले, सुम्मा हलका मालुल आखरी, फिर उस खरीदने के बाद दूसरे का माल हलाक हो जाए तो खरीदी हुई चीज में दोनों की शिरकत होगी। अम्मा इदा हलका मालु अहदिहिमा, और बाकी अगर दोनों में से एक का माल हलाक हो गया, सुम्मश्तरल आखरु बिमालिल आखरी, तो फिर उस दूसरे ने दूसरे के माल यानी अपने माल के जरिए कोई चीज खरीदी, माल किसका हलाक हुआ, आमर का, तो जैद है आखर, इस आखर ने कोई चीज खरीदी आखर के माल के जरिए, यानी जैद ने अपने माल के जरिए कोई चीज खरीदी, माना समझ में आ रहा है। तो कहते हैं अम्मा इदा हलका मालु अहदिहिमा, फिर दोनों में से जब एक का माल हलाक हो गया, सुम्मश्तरल आखरु बिमालिल आखरी, फिर दूसरे ने अपने माल के जरिए कोई चीज खरीदी, तो कहते हैं इन सर रहा बिल वकालती फी अकद शिरकती, अगर दोनों ने सराहत की थी वकालत की अकद शिरकत में, यानी वकालत को बाकायदा साफ लफ्जों में अलग जिक्र किया था, तो फल मुश्तरा मुश्तरकुम बैना हुमा, तो ये खरीदी हुई चीज दोनों के दरमियान मुश्तरक है, अलामा शराता, उसी तरीके पर जो शर्त ठहराई थी, उसी तरीके पर जो शर्त ठहराई थी, अगर यह शर्त ठहराई थी कि जो भी चीज खरीदेंगे उसमें निसफ निसफ दोनों का हिस्सा होगा तो उसके मुताबिक, और अगर यह शर्त ठहराई थी कि जो भी चीज खरीदेंगे जैद का हिस्सा अमर के हिस्से से दुगना होगा तो उसके मुताबिक भाई। तो कहते हैं इन सर रहा बिल वकालती फी अक्द शिरकती, और अगर दोनों ने अक्द शिरकत के अंदर वकालत की तसरीह की थी, यानी साफ लफ्जों में उसे अलग जिक्र किया था, फल मुश्तरा मुश्तरकुम बैना हुमा, तो वो खरीदी हुई चीज दोनों के दरमियान मुश्तरक होगी, अलामा शराता, उसी तौर पर जिस तरीके पर आपस में शर्त ठहराई थी, लिअन्न शिरकत इन बतालत, इसलिए क्योंकि शिरकत जो है अगरचे वो बातिल हो गई, अमर का माल हलाक हुआ तो शिरकत अगरचे बातिल हो गई, फल वकालतुल मुसर्रह बिहा काइमतुन, लेकिन वो वकालत जिसकी तसरीह की गई थी वो अभी भी मौजूद है। तर्जमा समझ में आ रहा है, कहते हैं लिअन्न शिरकत इन बतलत, इसलिए क्योंकि शिरकत अगरचे वो बातिल हो गई है, फल वकालतुल मुसर्रह बिहा काइमतुन, तो वो वकालत जिसकी तसरीह की गई यानी जिसे साफ लफ्जों में जिक्र किया गया काइमतुन वो अभी भी मौजूद है, फकान मुश्तरकम बिहुक्मिल वकालती, तो ये खरीदी हुई चीज दोनों के दरमियान मुश्तरक होगी वकालत के हुक्म की वजह से, वयकूनु शिरकत मिल्किन, और ये शिरकत मिल्क होगी, ये खरीदी हुई चीज इसमें जो शिरकत है वो शिरकत मिल्क होगी, क्योंकि अक़्दे शिरकत तो खत्म हो चुका है, उसके बाद सिर्फ वकालत की वजह से चीज खरीदी है, तो इस चीज के अंदर शिरकत मिल्क तो होगी, शिरकत अक़्द नहीं। तो कहते हैं वयकून शिरकत मिल्किन, और ये शिरकत जो है वो शिरकत मिल्क होगी, वयरजिउ अला शरीकी ही, और ये खरीदने वाला अपने शरीक पर रुजू करेगा, बिहिस्सती ही मिनस समनी, समन में से उसके हिस्से के अंदर, शरीक का समन के अंदर जो हिस्सा बनता है उसके अंदर उस पर रुजू करेगा, लिमा बैयन ना हो, उस वजह से जो हमने बयान कर दिया, उस वजह से जो हमने बयान कर दिया, क्योंकि ये दूसरे की तरफ से वकील है भाई। तो कहते हैं वयरजिउ अला शरीकी ही बिहिस्सती ही मिनस समनी लिमा बैयन्नाहु, तो ये खरीदार अपने शरीक पर रुजू करेगा समन के अंदर उसके हिस्से में, लिमा बैयन्नाहु, उस वजह से जो हमने बयान कर दिया कि ये उसकी तरफ से वकील है, वह इन ज़करा मुजर्रद शिरकती, और अगर दोनों ने महज़ शिरकत को जिक्र किया, भाई जब दोनों अक़्द शिरकत कर रहे थे तो उस वक्त उन्होंने वकालत को अलग जिक्र नहीं किया, सिर्फ शिरकत को जिक्र किया, और शिरकत के जिमन में वकालत भी आ गई, लेकिन यह वकालत है जिमनन, जब शिरकत खत्म होगी यह वकालत भी खत्म हो जाएगी, और उसके बाद जब जैद ने कोई चीज खरीदी है तो अब सिर्फ जैद ही इसका मालिक है, इस चीज के अंदर शिरकत नहीं, क्योंकि अब जैद अमर का वकील ही ना रहा, क्योंकि जब अमर का सारा सामान हलाक हो गया तो शिरकत खत्म, जब शिरकत खत्म तो उसके जिमन में मौजूद वकालत भी खत्म हो गई। तो कहते हैं वह इन जकारा मुजर्रद शिरकती, और अगर इन दोनों ने सिर्फ शिरकत को जिक्र किया था, वलम यनुस्सा अलल वकालती फीहा, और दोनों ने उसके अंदर वकालत पर तसरीह नहीं की थी, नस्सा यनुस्सु साद के साथ, इसका क्या माना है, तसरीह करना, वलम यनुस्सा अलल वकालती फीहा, और दोनों ने वकालत पर तसरीह नहीं की थी, फीहा उस शिरकत में, तो कान अल मुश्तरा, तो खरीदी हुई चीज जो है, लिल्लज़ी इश्तराहु खासतन, ये खास तौर पर उसी के लिए होगी जिसने इसको खरीदा है। जैद और अमर ने आपसे शिरकत किया था और अमर का माल हलाक हो गया, और उसके बाद जैद कोई चीज खरीदता है, तो जब शिरकत खत्म तो शिरकत के जिमन में जो वकालत थी वो भी खत्म, लिहाजा अब जो चीज जैद खरीद रहा है वो खास तौर पर जैद ही की है, उसके समन में वो अमर पर रुजू नहीं कर सकता, ये माना है। वह इन जकारा मुजर्रद शिरकती, और अगर दोनों ने सिर्फ शिरकत को जिक्र किया, वलम यनुस्सा अलल वकालती फीहा, और शिरकत के अंदर वकालत पर तस्रीह नहीं की, तो कान अल मुश्तरा लिल्लज़ी इश्तराहु खासतन, तो खरीदी हुई चीज खास तौर पर उसी के लिए होगी जिसने इसको खरीदा है, लिअन्नल वुकूअ अल शिरकति, इसलिए क्योंकि इस अकद का शिरकत पर वाक़े होना हुक्मुल वकालती, ये उस वकालत का हुक्म था, अल्लती तज़म्मनत हा शिरकतु, जिसको शिरकत मुतज़म्मिन थी। इस खरीदी हुई चीज का मुश्तरक होना किस वजह से था? वकालत की वजह से, वो वकालत जो शिरकत के जिमन में थी, और जब वो शिरकत खत्म तो उसके जिमन में वकालत भी खत्म, लिहाजा अब इस खरीदी हुई चीज में शिरकत नहीं होगी। तो कहते हैं लिअन्न अल-वुकूअ अल-शिरकती, इसलिए क्योंकि खरीदी हुई चीज का शिरकत पर वाक़े होना हुक्मुल वकालती, ये उस वकालत का हुक्म था, अल्लती तज़म्मनत हा शिरकतु, जिसको शिरकत मुतज़म्मिन थी, फ़इदा बतलत, जब यह शिरकत बातिल हो गई, तो यब्तुलु मा फी ज़िम्निहा, तो वो चीज भी बातिल हो जाएगी जो इस शिरकत के ज़िमन में थी, यानी वो वकालत भी बातिल हो जाएगी। बिखिलाफ़ मा इदा सर्रह बिल वकालती, बखिलाफ इसके कि जब वकालत की तस्रीह कर दी, लिअन्नहा मक़सूदतुन, इसलिए क्योंकि उस वक्त फिर वकालत भी मकसूद हो जाती है। जब वकालत को बाकायदा अलग सराहतन जिक्र कर दें तो वकालत भी मकसूद हो जाती है, लिहाजा वहां शिरकत खत्म करने से वकालत खत्म नहीं होगी, बल्कि वकालत को अलग से खत्म करना पड़ेगा। तो कहते हैं बिखिलाफ मा इदा सर्रह बिल वकालती, बखिलाफ इसके कि जब वकालत की तस्रीह कर दी तो उस वक्त फिर वो शिरकत खत्म होने से वकालत खत्म नहीं होगी, लिअन्नहा मकसूदतुन, इसलिए क्योंकि वकालत की तस्रीह कर दी जाती है तो वो मकसूद होती है, लिहाजा शिरकत के खत्म होने से वो वकालत खत्म नहीं होगी। बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुअल मराम, वल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।